اسلام علیکم خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن احسان صاحب who is has a long experience in the investment banking and hardcore banking space. He's opening up a new bank in somewhere in Europe, I'm not sure. We didn't talk about that a lot in this conversation, but interestingly جب وہ اپنی 21 سال بینکنگ کے کریئر کے بعد he opened up two businesses. ایک انہوں نے یو اے ای کے اندر لینڈسکیپنگ بزنس سیٹ اپ کیا, جس میں لینڈسکیپنگ اگین کے آپ نے لانس بنانے ہیں, گراؤنڈس بنانے ہیں, آپ نے جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو بلڈنگ کے باہر کا ہوتا ہے وہ آپ نے پورا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے, انکلوڈنگ سوئمنگ پولز اینڈ سو آن, وہ انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا اور اس سے انہوں نے بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان سے بھی بلایا, باقی جگہوں سے بھی انہوں نے اکٹھا کیا, اور دوسرا انہوں نے پاکستان میں ایک فیشن برانڈ لانچ کیا کالڈ نوریا. اینڈ آئی واز ویری کیوریئس کہ ہاؤ سم ون ہو کین سٹ ہیئر ان دبئی یو نو فنڈ اینڈ run and drive successful businesses for people in Pakistan, both jo Pakistan mein baithe hain ya overseas Pakistanis hain. So this was a very, very insightful conversation, and we discussed both of his businesses as well as a little bit of his personal life, but largely I focused on the businesses and how does one make them successful while sitting out here in Dubai. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریے گا, اگر آپ چینل پہ پرانے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا, اٹ ریلی ہیلپس دی الگوریتھم. اگر آپ کی کوئی تھاٹس ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آ کے بتائیں, ریڈ اپ آل دا کامنٹس اینڈ اٹ ریلی ہیلپس می امپروو دا کوالٹی آف دی کانورزیشن. اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو کنسیڈر ہیلپنگ اس آؤٹ یوزنگ دا سبسکرائب لنک ڈاؤن بلو اینڈ ہیلپ اس ریمین انڈیپینڈنٹ فار ایز لانگ ایز پاسبل. بٹ اینی ویز, ہیئر از محسن احسان آن ٹی وی ٹی گو دبئی اسٹوڈیو. محسن بھائی کیسے ہیں؟
بالکل ٹھیک.
زابل, تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ اینڈ ڈوئنگ دس. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جسٹ ٹو اسٹارٹ آف, آپ پیدا کہاں پہ ہوئے ہیں اور اپنے ارلی لائف اپنی کہاں پہ گزاری؟
یار میں لاہور میں پیدا ہوا تھا اور ارلی لائف لاہور میں گزری شروع کے کچھ سال. تو
ایجوکیشن وغیرہ
شروع میں سینٹ اینتھنی اسکول تھا لاہور میں, تو ادھر سے اسٹارٹ کیا تھا, گریڈ ون سے لے کے گریڈ تھری یا فور تک تو وہیں پہ رہے. تو بائی بلڈ جو ہے وہ لاہور, ایوری تھنگ. فادر جاب کرتے تھے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں,
رائٹ,
اینڈ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں پھر ان کو چانس ملا کنٹری سے باہر جانے کا, تو انہوں نے وہ اپرچونیٹی لے لی اور پھر میں ان کے ساتھ فیملی سب ہم لوگ افریقہ چلے گئے. ایک ملک ہے زامبیا,
اچھا,
دا سٹی از کالڈ لوساکا,
رائٹ.
تو لاہور سے ہم وہاں موو ہو گئے
سیدھا.
بالکل.
اور یہ پہلا ایکسپیرینس تھا باہر جانے کا یا اس پہلے کہیں ٹریول کر چکے تھے؟
نہیں, میں تو یو نو چھوٹا لائک تین تھرڈ فورتھ گریڈ میں تھا, تو ہاں ایگزیکٹلی 83 84 85 میں,
رائٹ.
تو میرے لیے تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا. فرسٹ
ٹائم افریقہ, 80s کا
افریقہ. یار آج بھی میں یہ بولوں گا کہ اٹس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز. میں مجھے آج بھی چانس ملے فرینکلی تو میں آج بھی جاؤں,
اچھا,
خوشی خوشی, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے.
لوگ بڑا وہ کہتے ہیں یار سیکیورٹی تو پتہ نہیں, یہ پرابلم وہ پرابلم ہے,
تو بہت کچھ کہتے ہیں.
کیونکہ پچھلے دن آئی واز اسپیکنگ ٹو ا کلوز فرینڈ آف مائن اینڈ ہی از ان دی سورٹ آف فن ٹیک اسپیس, تو ان کو بہت زیادہ آج کل آفرز آ رہی ہیں کیونکہ افریقہ میں صحیح بوم آ رہا ہے, تو ان کو بڑی تین چار آفرز آئیں اور وہ بار 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 ان کا ہی تھا. حالانکہ وہاں کی آفرز جو آتی ہیں نا وہ ایکسپائرڈ والی ہوتی ہیں, پرائز پوائنٹ بھی بڑا بہترین ہوتا ہے وہاں, کمپاؤنڈ شمپاؤنڈ میں رہنے کا بھی بڑا گڈ سین ہوتا ہے. لیکن ایک دماغ میں آپ کو میڈیا نے بنایا ہوا ہے یا مے بی اٹس اے ریئلٹی ایز ویل کہ افریقہ فیلز لائک دس انسیف پلیس, ڈسکنیکٹڈ فرام دا ورلڈ, پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے. تو آپ کا اگر میں ٹیچر سے پوچھوں, بیکاز یو گائز مووڈ فار اے جاب, رائٹ, یور فادر گاٹ اے جاب ایٹ آئی بلیو ون آف دا ہوٹلس.
ہاں, ہی گاٹ اے جاب ایٹ انٹر کانٹینٹل ہوٹلز ان افریقہ. وہ اس سے پہلے بھی انٹر کانٹینٹل ہوٹل لاہور میں کام کرتے تھے,
رائٹ.
تو اس کی وجہ سے سیم ایکسپوجر, سیم گروپ. اس وقت وہ پرل کانٹینٹل میں نہیں بدلا تھا,
رائٹ.
تو ہی دیر واز این اوپننگ دیئر اینڈ اس وقت ایک بڑا گروپ تھا, تو ہی اپلائیڈ اینڈ ان کا ڈپلوما تھا فرام جرمنی ہاسپٹیلٹی میں, تو ہی گاٹ دا چانس. تو دیٹس ہاؤ ہی لینڈڈ اپ دیئر,
رائٹ. سو ہاؤ واز اٹ, لائک ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس آف لیونگ ان افریقہ؟
یار ابھی آپ جو کہہ رہے ہو نا وہ بالکل ایکوریٹ ہے, لیکن وہ ہر جگہ کے لیے ایکوریٹ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جاؤ تو آپ کو تھوڑی سی وہ یو نو ایک انگزائٹی نہ ہو یا پھر کیوس نہ ہو, وہ سب ہوتا ہے. لیکن میں نے افریقہ اس وقت دیکھا تھا جب شاید بہت کم لوگوں نے افریقہ کی کسی کنٹری کا ان کو نام بھی پتا ہوگا, एंड अमेजिंग प्लेस. यस, कंपाउंड सिस्टम ही था बट दरवाज़ा खुला रहता था, कोई भी आ जाता था, कोई भी चला जाता था. बट उधर ये था कि वाइडर ऑडियंस जो एक्सपैट्रिएट्स थे वो एक ही जगह पे रहते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि क्लोज नेटवर्क था. अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी थी, जब आप मुल्क से बाहर होते हो ना, आप क्लोज हो जाते हो. अब वो हमारे लिए नहीं, कोई भी कंट्री का इंसान दूसरी जगह पे होता था ना, मतलब कोई इंडिया से है, इटली से है, किसी और मुल्क से, वो सब एक कम्युनिटी
बन गया. They have more in common than the locals, right? खासकर अगर आप इंडिया पाकिस्तान में देखें तो इंडियन पाकिस्तानी सिर्फ अपने अपने मुल्कों में लड़ते हैं. जैसे ही मुल्क से बाहर आते हैं, दुबई, अमेरिका, ये वो, सबसे ज्यादा दोस्तियां आपके इंडियन पाकिस्तानी से हो रही होती है, कनेक्ट सबसे ज्यादा वही होता है.
यहाँ पे देख लो आप, हर कोई सब साथ बैठ के खाना खा रहा है, बातें कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और वापस जाते हैं तो खबरें और ये वो अपने हिसाब से चलने लग जाती हैं. वो वही चीज़ अफ्रीका में थी. अफ्रीका के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? ग्रीनरी. इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, वाइल्ड एनिमल्स, और हर चीज़ नेचुरल. राइट, कुछ तो वैसे ही वहाँ पे वो नहीं था, लेकिन पीसफुल नेशन, ज़बरदस्त. ठीक है, हेल्थ केयर शायद उतना नहीं था, बट स्कूल्स अच्छे थे, बिकॉज अमेरिकन स्कूल्स थे या ब्रिटिश स्कूल्स थे. तो
और नेशनैलिटीज़ में were you able to, it's like दुबई है ना, इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ द रीजन कह लें, ऑफ द वर्ल्ड कह लें. अब तो कि आपको यूरोपियंस भी मिल रहे हैं, ब्रिटिश भी मिल रहे हैं, अमेरिकन भी मिल रहे हैं. एशिया में तो एवरी नेशनैलिटी अंडर द सन इफेक्टिवली. आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों से दोस्ती नहीं कर रहा, वो हर किस्म के कल्चर्स को देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है. वहाँ पर आपने कहा कि देर वॉज अ कंपाउंड सिस्टम, सो वॉज देयर लाइक वेरी स्पेसिफिक, अच्छा चलो पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं, इंडिया से शायद कुछ लोग आए हुए हैं, या मल्टी नेशनल था इन दैट कॉन्टेक्स्ट?
दोनों थे. उधर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के भी लोग आए हुए थे. उधर अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज से भी अफ्रीकन्स थे. तो फॉर एग्जाम्पल हम जैम्बिया में थे तो कोई कीनिया से था, कोई युगांडा से था. ठीक है ना, तो इट वॉज नॉट ओनली के यू नो सिर्फ फॉरिनर्स या डिफरेंट यू नो एक रेस, ऐसा कुछ नहीं था. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे, उधर के खुद के लोकल्स भी, यू नो, जिनके अच्छी जॉब्स या यू नो दे. अच्छी बात कह थी उस कंट्री की, इट हैड बीन अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो अंग्रेज़ी इंग्लिश कॉमन थी, कम्युनिकेशन में आसानी हुई थी. जब मैं लाहौर से गया तो मेरी इंग्लिश ठीक थी, बस सब गुजारा कर लेते थे. लेकिन वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुई. वो एक्सपोजर डिफरेंट मुल्कों से, किसी किसी कंट्री से. अब उनके घर भी जाते थे हम, तो खाने भी डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट. मैंने एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, ये सब मतलब रियल लाइफ में देखे हुए.
ओपन नेशनल ज्योग्राफिक वाला फिनोमेना है ना, कि अफ्रीका को आप देखते हैं तो आपको ये अगेन एलिफेंट, ज़ेब्रास, ऐसा फील होता है, ऐसा बताया जाता है कि यार अफ्रीका में तो देर जस्ट एवरीवेयर, देर आउट इन दी ओपन. आई डोंट नो अबाउट टुडे, बट उस टाइम पे वाकई ऐसा था कि सफारीज हैं तो वो वाकई यू नो देर हर्ड्स एंड हर्ड्स ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ दैट्स बीइंग वाइल्ड एज अ सिविलाइजेशन ऑफ इट्स ओन.
बिल्कुल ऐसा था. मुझे अभी तक याद है, हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाके स्कूल था, स्कूल से आगे फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट में आप चले जाओ तो यू वुड नॉट बड़े बड़े बट छोटे छोटे एनिमल्स आपको नजर आ जाते थे. आज भी अगर आप इवन पाकिस्तान के माउंटेन एरियाज या कहीं और चले जाते हो तो आपको मंकीज ये वो सब मिलने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा थे. उधर क्या है कि मैंने कहा ना ग्रीनरी बहुत थी, तो बड़ी बड़ी फील्ड्स में लार्ज माइग्रेशन जब होती थी तो कीनिया, जैम्बिया, इधर बहुत मैसिव इन्फ्लो आता था. तो ये बिल्कुल सही बात है, ओपन फील्ड्स में है. अब क्या कर दिया उन्होंने कि वही ओपन फील्ड्स को उन्होंने थोड़ा सा सराउंड कर दिया
ताकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम रहे. राइट,
लेकिन था ऐसे.
हाउ इज द वेदर इन अफ्रीका? आपने कहा ग्रीन है, ग्रीन इज नॉट जनरली द एसोसिएटेड इमेज ऑफ अफ्रीका, राइट? इट्स जनरली जो मीडिया में ज्यादा आता है वो बैरन लैंड्स. मिडल ईस्ट इज डेजर्ट बट अफ्रीका सीम्स लाइक यू नो बैरन लैंड्स एंड कहत पड़ा हुआ है, खाने का मसला है. So how was the weather and not just temperature but also rain and stuff like that? Sorry, मैं वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था, courtesy of our friends at Sarmaya Financial. और ये मैसेज है पैसे के बारे में. तो पैसा तो आजकल वैसे ही हर किसी को चाहिए, लेकिन ये मैसेज मैं नहीं डिलीवर करूँगा, ये मेरा एक दोस्त डिलीवर करेगा जिसका नाम है तैमूर सलाहुद्दीन, also known as मोरू।
पैसा 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 भाई, सीन ऐसा होना चाहिए कि सोए हुए भी बंदा पैसे बना सके। टेक्निकल एनालिसिस की मैंने मास्टर क्लास ली और अब सोए सोए मेरे पैसे बन रहे होते हैं। क्रिप्टो फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट्स के ट्रेंड को मैंने समझ लिया है और उनका फ़ायदा उठा रहा हूँ थोड़ा बहुत। कैपिटल मार्केट्स के फंडामेंटल का कोर्स भी आप ले सकते हैं, जिससे बड़ी तस्वीर आपको समझने को मिलती है और उससे मदद होती है आपकी कि आप कंपनीज या म्यूचुअल फंड से कैसे दानिशमंदी में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अल्टीमेटली सोने का वक्त मिल जाता है और पैसिव इनकम आपको मिलती है कि मार्केट में कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है, ताकि बोरिंग लेक्चर से बेहतर है कि घर बैठे सोए रहो और पीछे छुके छुके पैसे बनते रहें। तो जाओ sarmaya.pk पे और ये दो कोर्सेज चेकआउट करो।
जाम्बिया के लिए आई थिंक बिकॉज वो लैंडलॉक कंट्री थी, तो लैंडलॉक कंट्री का वेदर बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम द सी, तो उसका वेदर जो है वो हमेशा एक अच्छा रहता था, पूरे साल एक ही किस्म का वेदर था। ना एसी होता था ना पंखों की मतलब ऐसे जरूरत पड़ती थी।
अच्छा।
तो आप खिड़की खोल दें तो
ट्रॉपिकल
टाइप होता था। अच्छा। ना गर्मी ना सर्दी, एंड थ्रू आउट द मॉनसून सीजन आते थे,
बारिश वगैरह होती थी,
होती थी। बैरन लैंड था उधर, बट सर्टन पार्ट्स ऑफ इट यू नो, एक शहर था जैसे कफवे मरीना और लिविंगस्टन, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जो लुसाका था और उसके आसपास की जगह थी वो अच्छी थी। बल्कि ऊपर की तरफ कॉपर बेल्ट है तो माइनिंग वगैरह भी होती थी।
राइट राइट राइट।
इस कंट्री की थोड़ी सी लोकेशन शायद इथियोपिया से डिफरेंट है या अदर कंट्री से डिफरेंट है, बट बड़े कम लोग हैं जो जाम्बिया गए होंगे अभी भी। आई डोंट थिंक बहुत लोगों को उसका पता होगा।
ऐसा ही है। सो यू वर देयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स?
जी बिल्कुल, आई वाज देयर फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years, 6 years।
अच्छा, यू वर देयर फॉर अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू इयर्स।
मेरे सारे दोस्त आज भी मुजम्मिल वहीं के। और वहाँ पे क्या होता था कि अगर आप स्कूलिंग में है ना, तो उधर टारगेट क्या होता था, अच्छा आपने फॉर्म ग्रेड 10, 11, 12 करना है एंड देन यूनिवर्सिटी के लिए आपने लंदन, यूएस या बैक होम आ जाना है।
Right.
तो वहाँ के जितने भी दोस्त हैं आज भी बहुत सारे फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। कुछ अफ्रीका में है, वो अफ्रीका में कोई नहीं रहा,
अब तो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो गया
है, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएस, कनाडा, और कुछ लोग लंदन में, कुछ लोग दुबई में है, एक दो पुरानी फैमिली जो पाकिस्तान वगैरह चले गए हैं, लेकिन आई एम स्टिल कनेक्टेड।
इंटरेस्टिंग। व्हाट ग्रेड वर यू इन व्हेन यू फाइनली डिसाइडेड टू कम बैक?
सो आई वेंट देयर, आई वाज इन ग्रेड 4, देन 5, 6, 7, 8 एंड आई थिंक 8th grade का एंड ऑफ मिड ऑफ द ईयर, यू नो 4, 4.5 साल बाद, दैट इज व्हेन आई केम बैक। एंड वहाँ से वापसी हुई another great city of Pakistan, lively city, we landed in Karachi.
Achha.
So, city of lights.
Interesting. Africa, I would assume the city that you were in most likely was a small-ish city? Yeah, was it like a mega city, jisna Pakistan mein hame concept hai? South Asia mein particularly, Delhi, Dhaka, Karachi, or even Lahore to some extent has become like a mega city now with 12 to, abhi jo recent maine padha tha, तो नहीं 14-16 million की आबादी, टॉप 20 में तो आ रही है अब। आई एम नॉट श्योर 80s में अफ्रीका में वाज अ सिमिलर वाइब।
नहीं, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल पॉपुलेशन कम थी, लोग अभी भी निकल रहे थे,
रूरल टू अर्बन टाइप सिचुएशन हो रही थी,
बिल्कुल थी, और वहाँ पे भी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। फार्मर्स जो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, वो फार्मर्स थी, वो अपनी डे टू डे लिविंग वही काश्तकारी करके करते थे और बहुत कम इनकम में उनको सर्वाइव करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि गुर्बत नहीं थी, बहुत थी। हम अल्लाह का शुक्र है ब्लेस्ड थे, तो यू नो वी वर एबल टू सी अ डिफरेंट साइड, लेकिन उधर के मुल्क के लिए कुछ हालात ऐसे थे।
इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, गुर्बत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ ना, जबकि उनके उनकी बचपन, उनकी जवानी, या उनसे पूछता हूँ कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की क्या लाइफ थी, तो वो बड़े खुश बताते हैं कि हमारा बचपन ऐसा था। और जब आप उनका बचपन सुनते हैं तो आप अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आप कहेंगे कि यार आप तो बेचारे बहुत ही गरीब थे, यू नो। लेकिन व्हेन यू लुक एट देयर शेयर्ड एक्सपीरियंस, दे लव्ड इट, यू नो, दे वर सो हैप्पी विद एवरीथिंग दैट दे हैड। एंड आई फील लाइक ओवर टाइम, पोस्ट अमेरिका winning the battle of narratives with USSR, you know, communism versus capitalism. So capitalism ne ek unfortunate cheez hai, usne bahut development ki undoubtedly, but ek unfortunate cheez ye ki usne na somehow it ostracized those who did not, I would say for a lack of a better word, lust after the bigger and better, right? जहाँ पर जो है वो आप हम जाते हैं और हम जाके देखते हैं कि यार एक गांव है, गांव में यू नो फार्मर है, वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, बड़ा खुश है, हम कहते हैं पागल आदमी है, यू नो, एंड आई फाइंड दैट वेरी फैसिनेटिंग, यू नो. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट?
मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन ना बड़ी मतलब एक डिफरेंस ही है, और योर स्पॉट ऑन ऐसा ही था कि आज किसी को देखो जो कहे कि मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजरी और हम कंपेयर करें, हम कहेंगे पागल है, मतलब इससे तो हम बहुत अच्छी तरीके से रह लिए हैं. लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था कि जब हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे या दे वर ग्रोइंग अप, तो उनके जो पेरेंट्स थे ना वो वर्ल्ड वॉर के टाइम देख चुके थे, उन्होंने बड़ी इंस्टेबिलिटी देखी थी, डेड बॉडीज ये सब देखा था. तो उनके लिए उनके बच्चों को बड़ा करके एक जॉब में लग जाना, सिर्फ यही चीज़ ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उन वक्तों में. किसी को ग्रेजुएट हो जाना एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी, एक बहुत बड़ी चीज़ थी. तो आई थिंक मेरा इसमें व्यू ये कि
सो यू थिंक इट्स द पीस एंड स्टेबिलिटी दैट जो एक जन जो प्रॉब्ली 70s 80s की जनरेशन ने देखी, उसकी वजह से अब वो आज कह रहे हैं कि यार यू नो व्हाट, बिगर एंड बेटर होना चाहिए.
हाँ, रिपल इफेक्ट
कि मजा तो तब आएगा, चलो एक घर में तो रह ही लेते हैं लेकिन बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी तो होती है लेकिन बड़ी गाड़ी होनी चाहिए.
बिल्कुल यही वो चीज़ है.
हाँ.
और मेरा अपना जाती ख्याल है कि आज जिस तरह हम जेन जी की इनकी बात करते हैं, तो ये लोग बड़े होकर जब हमें देखेंगे ना, तो इनका होगा यार ये लोग कैसे एक जॉब में 20-20 साल लगा गए, कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इसको कैसे लाइफ कहते हैं. तो आई थिंक ये एक मूविंग सर्कल है जो मूव करता रहेगा विद टाइम, और इसको आप 5 साल 10 साल पे स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, इसको आपको 100 ईयर के साइकिल पे प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना है.
मेक सेंस, बट देन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? जो स्टेबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, इवन जॉब्स का और एंटरप्रेन्योरशिप का, या एंटरप्रेन्योरशिप एक तो बिजनेस सेंस में होती है, अब एक फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं ही हूँ अपना बॉस और मैं ही अपना वाहिद एम्प्लॉई हूँ, और मैं डिफरेंट लोगों के लिए थोड़े थोड़े बकेट्स में काम कर दूंगा. पहले वक्तों में होता था कि जी एक करियर जॉब होती थी, एक जॉब आपने करनी है, 30 साल का करियर गुजारना है. मेरे वाले साहब ने ऐसे किया, आई एम श्योर आपके वाले साहब ने भी ऐसे किया होगा, फिर रिटायरमेंट होगी और फिर आप सुकून से बैठेंगे. फिर सुनने में आया, खासकर जो मेरी इंडस्ट्री थी आईटी की, कि यार 3 साल अगर तुम एक जगह पर हो ना, उससे ज़्यादा अगर रुक रहे हो तो आपको ज़ाया कर रहे हो, तो आपने हर 3 साल बाद जंप करने हैं और आपने एक नई जॉब पर जाना है. अब ये सीन है कि यार आप प्रोजेक्ट बेसिस होता है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट पे हूँ ना, 3 महीने से ज़्यादा मैंने एक प्रोजेक्ट कर लेना, यार ये अब तो मेरा मैं वेस्ट हो रहा हूँ, यू नो मेरी क्रिएटिविटी किधर है. तो फ्रीलांसिंग आ गई. लेकिन वाइल दिस इज़ ट्रू, ये तो एक 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 सेपरेट चीज़ है, एक एलिमेंट है ऑफ मनी, राइट? वेर यूर लाइक के ओके आई वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर, आई वॉन्ट गो टू मैकिन्ज़ी फॉर एग्जाम्पल, और आई वॉन्ट गो एंड बिल्ड अ करियर बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रिच एंड आई वॉन्ट टू यू नो गेट अ गुड हाउस एंड अ गुड कार एंड आई वॉन्ट सेंड माई चिल्ड्रन टू अ क्वालिटी प्राइवेट स्कूल. जेन जी के अंदर मैं एक जो शिफ्ट देख रहा हूँ, और एक ओवरऑल दुनिया में मैं एक शिफ्ट ये देख रहा हूँ कि लोगों को ना अभी एक एक एहसास हो रहा है कि यार मनी maybe is not the most useful driver. So I'll do things, but maybe not for the money. I might do it for impact. I might do it for satisfaction. I might do it for, agar mere samne opportunity aati hai, main jab aaya na nahi hai Dubai, to mujhe left, right and center property dealer types ki call aana shuru ho gayi na, jo Pakistani hai, usne kaha yaar ye connected hai banda Pakistaniyon se, paisa aisa waisa ghoom raha hai, to ye aayega, hame bechega, piche se Pakistani sara ameer aake paisa dalega. सर ऐसी कमाल ऑफर है ना, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख दे रहा हूँ, अपार्टमेंट बेचो 9 लाख का, इधर JVC का 2 लाख तुम्हें ऊपर से मिलेगा, ठीक है. अब मसला ये है कि यार वाकई, और मैं नया नया आया हूँ, मेरे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार मेरे फैमिली को सस्टेन करना है, मुझे पैसे चाहिए. बट शायद रैशनल डिसीजन वुड हैव बीन कि कर लेते, 6 महीने करते, अच्छे पैसे कमाते, निकल जाते, एग्जिट कर लेते, लेकिन मुझसे नहीं हुआ. यू नो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सका कि यार जिस चीज़ का मेरा कोई सर पैर नहीं पता, जिस चीज़ को मैं समझ नहीं सकता, जिस चीज़ को मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्यों प्रॉपर्टियाँ बेचूँ लोगों की, राइट? सो सम हाउ व्हाट आई एम सीइंग इज द न्यूअर जनरेशन, दे आर चूजिंग टू परस्यू वैल्यू एंड दे आर ऑल्सो सेइंग के यू नो वॉट, लाइक गेटिंग द लेटेस्ट iPhone इज नॉट गिविंग मी द सेटिस्फैक्शन दैट आई थॉट इट वुड गिव मी. वो नेचर के थोड़ा करीब होना शुरू हो गए हैं, वो कह रहे हैं वो थोड़ा सुकून की तरफ, सुकून को तलाश करना शुरू हो गए हैं. हैव यू सीन अ सिमिलर ट्रांजिशन?
तो सबसे पहली बात, जेन जी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है. क्यों? उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो हमें अपने टाइम पे नहीं मिला आज से 20-25 साल पहले. कुछ लोग होते हैं उस एक्सपोजर को सही तरह यूज़ नहीं करते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम आर स्मार्ट और वो सही तरह उसको यूज़ कर रहे हैं.
हाँ.
तो एक इसका अच्छी चीज़ इसकी क्या है कि आप उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं लेकिन आप जल्दी बोर भी होने लगते हैं.
हाँ.
तो अब आपको आईफोन में वो मज़ा नहीं आ रहा. हाँ. जो आपको शायद पहली दफ़ा लेने में आया था. लेकिन दो चीज़ें हो सकती है ना यहाँ पे. अब आप बोर हो रहे तो क्या करें, छोड़ ही दें आईफोन लेना या फिर मजीद कुरेदें.
हाँ.
वॉट एल्स, एयरपॉड्स, क्या कर सकता हूँ मैं और कैसे टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकता हूँ. तो एक ये चीज़ हो गई. उसकी वजह से एक चीज़ जो हर वक्त जिसको मैं एडवोकेट करता हूँ कि यार एक चीज़ जो है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है, वो है चेंज. जिस दिन आप ये समझ जाएं कि चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट थिंग ना, तो फिर आप आधे सवर गए. अब उसको आप जितनी जल्दी जैसे जैसे अडॉप्ट कर लें.
हाँ.
वो अच्छा है. रियल स्टेट की बात की, 2 लाख बनेंगे लेकिन साइकिल सोचो.
हाँ.
आपने लिया एक ट्रांजेक्शन 2 लाख, जो अगला लेगा ना.
हाँ.
वो 2 नहीं बनाएगा.
हाँ.
वो मैक्सिमम 0.25 लाख, 1 लाख. बट जो तीसरा लेगा ना.
हाँ.
वो शायद ऐसा टाइम भी देखे कि वो सोचे कि यार अगर 50,000 कम में भी बिक रहा है तो मैं बेच दूं.
हाँ.
तो रियल स्टेट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड फिनोमेना. और रेंट सीकर्स या हर किसी को जिसको रेंट की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाता है.
हाँ.
वो ये भूल जाता है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उसको ये नज़र आ रहा था मेरे 25,000 रुपये आ रहे हैं.
हाँ, मतलब वही ना, मेरा रियल स्टेट का मसला ये था कि यार मैं इन एन एक्सट्रीमली पम्प्ड इकोनॉमी, जहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वैसी प्राइस बढ़ी हुई है, बाकी सिर्फ यूक्रेन रशिया नहीं पूरी दुनिया का जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना, पैसा ऐसा दुबई में पंप हो रहा है. ठीक है, अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सेइंग कि गिरेगा ही गिरेगा, बट आई हैव नो आइडिया कि 3-6 महीने बाद क्या सिचुएशन होती है. इस वक्त मैं जाके अपना नाम इस्तेमाल करके मैं पाकिस्तान से इन्वेस्टर को बोलूँ इन्वेस्ट कर दो, 6 महीने बाद अगर उसके ऊपर जाके मार्केट आउट होती है तो वो तो बेचारा यार पाकिस्तानी का पैसा बड़ा हार्ड अर्न पैसा होता है.
बिल्कुल बिल्कुल
राइट. ये कोई अमीर कौम तो है नहीं. अमेरिकन को बेचना एक बात होती है, पाकिस्तानियों को बेचने का मतलब ये है कि वो अपनी खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं,
20-20 साल काम करके इकट्ठा किया होता है फिर उसको कहीं डालने की, और उसमें भी कभी कभार बेचारे गलत जगह डाल देते हैं.
हाँ,
दे रिग्रेट और इतने वो हमने सुना हुआ है. लेकिन मेरा अपना व्यू ये कि आप सिर्फ एक चीज़ पर नहीं रिलाय कर सकते. ये नहीं हो सकता आपने कहा कि मैंने एक मकान बना लिया इसमें मैं रहूँगा और दूसरा मकान मैं किराए पर रहूँगा. वो लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है. आप भूल जाते हो इन्फ्लेशन, आप भूल जाते हो आपकी डी वैल्यूएशन, आपका पैसा वीक होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है. तो वो 25,000 को आप कैसे 50,000 2 साल में कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते. बस वो आपके माइंड का ना एक फिनोमिना बन चुका होता है, ये 25,000 आ रहे हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. आप भूल जाते हो उस 25,000 से मैं 10 साल पहले क्या ले सकता था, अब क्या ले सकता हूँ. आज भी आप बात करो ना किसी से.
हाँ.
कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, तो अगला कहता है 1,00,000 रुपए. अब यही चीज 10 साल पहले भी होती थी.
हाँ.
यार मुझे पैसे चाहिए 1,00,000 रुपए, उस वक्त भी रिएक्शन यही 1,00,000 रुपए. लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आया वो 1,00,000 10 सालों में ना वो आधे से आधा हो गया.
हाँ.
बट वो जो एक माइंड सेट चीज होती है ना, उसको थोड़ा ब्रेक करने में ना लोगों को प्रॉब्लम होती है.
अच्छा, वैसा बढ़िया, आपने इंटरेस्टिंग बात की इंटरेस्ट की, इन्फ्लेशन की. राइट, फिएट करेंसी जो है, मैं जब पाकिस्तान में लोगों से बात करता हूँ ना, पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एक तो लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाए, कभी हमने सिखाई नहीं इकोनॉमिक्स. मुझे लगता है ये हाई स्कूल में सिखानी चाहिए जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं. बट हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी सारी की सारी अजीब होती है, क्योंकि उसमें जो बात हो रही होती है, जो फ़लसफ़ा होता है, वो कुछ होता नहीं है, बस यू नो पॉपुलिस्ट नारे होते हैं. बट इसी के साथ साथ जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, शरिया कंप्लायंस, इस्लामिक बैंकिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है. जब उस पर लोग बात करते हैं तो लोग पहली बात करें सूद हराम है, विच इज़ फाइन, सूद बाय डिज़ाइन हराम है. एक चीज़ मैं नहीं रेकनसाइल कर पाया, आपका एक्सपीरियंस पहले बैंकिंग का रह चुका है, फाइनेंस का रह चुका है, तो मे बी यू माइट बी एबल टू हेल्प मी. देखिए, एक तो सूद ये ना कि यार मैंने आपको 4 सेब दिए, आप खा गए, और आपने कहा मैं तुम्हें अगले महीने 4 सेब दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा महीने इस महीने के सेब ज़्यादा हैं, अगले महीने आप मुझे 4 वापस कर देंगे, मैं वो खा लूँगा, तब मुझे खाना होगा. लेकिन मैं आपको कहूँ यार तुमने ये 4 सेब लिए, अब हर महीने तुमने 2 सेब मुझे एक्स्ट्रा देने, तो वो सूद है. राइट, कि जितना आपने वैल्यू मेरे से ली, आप उससे ज़्यादा वैल्यू मैं आपसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. सेम विद गोल्ड, सेम विद एनीथिंग. बट देन आई ट्राई टू एक्सट्रापोलेट दैट टू फियट, और मैं कहता हूँ, मेरा दोस्त कहता है कि यार ये लो, मैं उसको कहता हूँ 1,00,000 रुपया ले लो, वो 4 साल गायब हो जाता है. और वो 4 साल बाद कहते हैं कि यार ये लो 1,00,000 रुपया वापस, और इस्लाम तो ऐसा ही था. अब उसमें या तो प्रॉब्लम ये है कि यार यू फियट करेंसी, या इस्लाम ये क्या कि उसने जना सारा चूना लगा दिया, कि या कहीं ना कहीं उसको उस फिएट करेंसी के अंदर जो ट्रू वैल्यू है वो उसको रैशनलाइज करनी चाहिए. और उससे अगेन फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, जो मुझे एकदम से फतवा लगाएंगे, कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, मैं तो आई एम अ ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड शरिया कंप्लायंस. असद जमान साहब के साथ हमने की थी पॉडकास्ट जिसमें हमने डेप्थ में इसको डिस्कस किया, इनक्रेडिबल माइंड. बट व्हेन इट कम्स टू फिएट करेंसी, व्हेन इट कम्स टू हार्ड कैश, मैं अगर कहता हूँ कि यार 9% डिवैल्यूएशन है तो, और अगर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि यार अगर तूने ये अपने पास रखे ना तो हर साल जब तू मुझे वापस नहीं करेगा 9% बढ़ा कर देना, वो सूद होगा.
यार इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. टू बी एक तो सबसे पहली बात, जो दोस्त 4 साल के लिए लेके चला गया उसको दोस्त नहीं बुलाओ तो वो तो एक अलग डिस्कशन है. लेकिन पॉइंट ये कि उसको कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत सारे. एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लोग उसको भूल जाते हैं. बस वो ये एक कंपोनेंट ले आते हैं माइंड में कि इसके ऊपर अगर कोई भी फिक्स चीज़ है तो वो हराम हो गई. मेरा उसमें सिर्फ व्यू इतना है कि अगर आप एक बेसिक इकोनॉमिक्स देखते हैं, आप आज एक बैग रख लें 500 रुपये के नोट्स का और उसके अंदर कुछ पैसे हों, उससे आप आज जाके क्या खरीद सकते हैं और उस बैग को फिर आप टच ना करें और उसी बैग को आप 5 साल बाद निकालें और क्या खरीद सकते हैं.
हाँ.
तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा आप कब चीजें खरीद सकते हैं.
राइट.
तो क्या हुआ, पैसा गायब हो गया ना.
हाँ.
तो अब किसके ऊपर उंगली उठाएंगे.
हाँ. क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे कि मैं जरूरत से ज्यादा ले रहा हूँ, अब वो एक्चुअली दोस्त जो है वो तो जरूरत से ज्यादा काट रहा है. विच इज वाई डू यू थिंक पोटेंशियल काउंटर कुड बी कि यार इस तरह की ट्रेड्स, एक हाइपोथेटिकल सी डम सी सिचुएशन है, बट दो दोस्त आपस में कह रहे हैं कि यार मुझे पैसे चाहिए, तो आप कहते हो ठीक है यार मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1 लाख रुपया उसी वक्त में गया और मैंने जाके या तो पैक कर लिया उसको विद डॉलर और इवन डॉलर इवैल्यूएट, सो मैंने पैक कर लिया गोल्ड को. मैंने कहा यार 10 ग्राम गोल्ड जो है, इस वक्त 10 ग्राम गोल्ड मिलता है आपको रफली, कल मैंने पता किया 2500 दिरहम 80 रुपीज़ के हिसाब से लगाते हैं 80 2 लाख रुपया.
हाँ, 2 लाख.
सो 2 लाख रुपया उसने मुझसे मांगा. मैंने कहा यार 10 ग्राम चाहे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है. उसने ले लिया. 5-4 साल बाद मैंने कहा यार जो आज 10 ग्राम है मुझे दे दो. डू यू थिंक दैट वुड बी अ पोटेंशियल वे टू, क्योंकि इंटरेस्ट जब मैं उसको बोलूंगा ना 2% 3%, वो कहेगा यार तुम तो जाना काफिर हो गए, तो
सूदखोर हो गए.
सूदखोर हो गए. क्योंकि जो द कॉन्वर्जेशन ऑन डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अ पॉइंट, इट्स नॉट अ कॉन्वर्जेशन ऑन इस्लामिक फाइनेंस, इट्स अ कॉन्वर्जेशन ऑन द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी. एंड दैट मोस्ट पीपल पर्टिकुलरली पाकिस्तानीज, उनको नहीं पता. वो अपने संदूकों में पैसा रखते हैं, वो अपने प्रॉपर्टी के प्लॉट लेते हैं, कहते हैं यार 1 करोड़ से 1.25 करोड़ हो गया सर, डॉलर की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, गोल्ड की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट मनी, यू हैवंट मेड एनी. सो आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन दैट पॉइंट.
मेरा अपना जाती ख्याल इसमें ये कि अगर एक दोस्त आपसे पैसे लेता है,
हाँ,
और आपको पता है कि वो जाके पैसे किस चीज में लगा रहा है,
हाँ,
और आप उसके साथ ऐसा मिलन रखते हो, आपको पता है कि यार इसने कोई पानी का काम शुरू किया है और उसमें लगा रहा है और उसका खर्चा, और उससे वो 2 पैसे बना रहा है, और वो आपको कहता है कि यार मैं इस तरह के आपको रिटर्न्स दे सकता हूँ, कोई मैं फिक्स नंबर नहीं बता सकता,
हाँ,
लेकिन चूंकि मैं एक 20% 25% बनाता हूँ,
हाँ,
तो तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी अच्छे वक्त में मदद की है, तो मुझे पता है कि मैं एक आइडिया दे सकता हूँ. अब इसमें मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब आप कोई चीज़ फिक्स नहीं कर रहे, आप एक बॉल पार्क फिगर दे रहे हो और वो चीज़ एक बिजनेस से ड्राइव हो रही है, और आपने, आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपने सिर्फ पैसा दिया, लेकिन आपको पता है अगले ने वो पैसा किधर लगाया हुआ है और उस काम से वो क्या कमा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई ऐसी चीज़. अगर वो आपको ये कहता भी है कि मैं 10 से 15% दूंगा और देता आपको फिक्स ही 12% है हर महीने, ठीक है ना, लेकिन उसको पता है कि उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उसको पता है कि यार एक मेरा दोस्त मुजम्मिल है, उसने मेरी इस वक्त में मदद भी की हुई है, तो मैं उसको एक चीज़ दे के कम भी नहीं दे सकता. तो बैलेंसिंग एक्ट भी एक चीज़ होती है जो कि दुनिया के साथ आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना. अब इस चीज़ पे लेबल कर दिया जाए कि नहीं ये फिक्स है, तो ये इसमें फिक्स कुछ नहीं है. यू हेल्प्ड अ फ्रेंड जिसने किसी काम में काम लगाया. अब एक और चीज़ ले लेते हैं, आपको प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है आगे कहता है कि जी इतना है और ये फिक्स है,
राइट.
अब जिधर आपको कुछ पता नहीं है कि वो पैसा इन्वेस्ट किधर हो रहा है, आपको कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशन इस्लामिक भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, हालांकि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन क्लियरली बताते हैं कि हम अपना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट करें, बट एक आर्ग्यूमेंट से कि कोई भी जगह आप इन्वेस्ट करते हो और आपको पता नहीं है वो किधर जा रहा है और उसके बदले आपको मंथली फिक्स मिल रहा है, आई थिंक वो वाली चीज़ थोड़ा सा एज अ सूद की तरफ चली जाती है, एज अपोज टू इन्वेस्टिंग विद समबडी ऑन अ बिजनेस जो शायद आपके साथ प्रॉफिट लॉस शेयर ना करे, लेकिन फिर भी आपकी सपोर्ट में अपना बिजनेस चलाने के बाद आपको एक सर्टन अमाउंट आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को रख के कि आपने उस वक्त उस पर रिस्क लिया जब कोई और नहीं ले रहा था, दैट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज समथिंग फिक्स, समथिंग ऑफ यू नो इंटरेस्ट काइंड. ये मेरा अपना एक इंडिविजुअल.
ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगेन पाकिस्तान में सेविंग्स अकाउंट पे लोग नहीं जाते, बहुत सारी और चीज़ों पे नहीं जाते. अगेन क्वेश्चन मार्क है. जो लोग इस्लामिक फाइनेंस को बेहतर समझते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे आगे बताएं कि इसको किस तरह से वो रेकनसाइल करेंगे. बट जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं वो इफेक्टिवली क्या कर रहे होते हैं, वो आपको जो इन्फ्लेशन होती है, 20% इन्फ्लेशन है, स्टेट बैंक ने 20% रेट रखा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट ने वो 20% प्रोटेक्ट कर दिया, तो यू आर नॉट रियली मेकिंग एनी मनी, यू आर जस्ट रिटेनिंग द वैल्यू ऑफ मनी इन अ लॉट ऑफ वेज. बट पाकिस्तान में यू नो सेविंग्स अकाउंट्स लोग नहीं रखते. वाइल दैट इज ट्रू, पाकिस्तान में लोग पैसे लगाते हैं. आई रिमेंबर एक दफ़ा मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि यार वो 4 लाख रुपये का एक आया हुआ है, फाइल आई हुई है, 4 लाख डालोगे हर महीने जो है ना 60,000 रुपया मिलेगा. मैंने उसी अकाउंटिंग की, मैंने कहा तू मुझे बता कौन सा ऐसा बिजनेस है वो हीरोइन बेच रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो साल के आखिर में 150% रिटर्न जनरेट कर रहा है.
गैम्बलिंग के उसमें आ जाता है ना,
पोंजी स्कीम है, राइट,
पोंजी स्कीम्स.
मुझे पिछले दिनों एक इसी तरह ईमेल आई, अब अगर वो साहब देख रहे हो तो इनको पता लग जाएगा, बट एक टीम की तरफ से ईमेल आई, उन्होंने कहा जी हम आपकी पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं. मैंने कहा जी बेहतरीन है, सौ बिस्मिल्लाह आ जाए. उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रोफाइल शेयर की, उन्होंने प्रोफाइल शेयर की, उसमें उन्होंने कहा मार्केटिंग कंपनी है, ये है वो है, बहुत सारी उसमें चीज़ें लिखी हुई थी. अच्छा मैंने ना वैसे ही थ्रो करने के लिए ना मैंने कहा जी मैं $3,500 चार्ज करूँगा, आप आ जाए. अगली ईमेल आई, मनी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, हम आ जाते हैं. मैंने कहा अच्छा जी ये कौन है जिसके लिए मनी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, $3,500 मैं उनसे मांग रहा हूँ. मैंने खोली उनकी, जो उन्होंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स भेजी थी मैंने डिटेल में देखी. एक डॉक्यूमेंट मैंने खोली तो जो पूरी वी आर अ मार्केटिंग कंपनी, आईटी सर्विसेज, दुनिया की एवरीथिंग वी डू, राइट, आईटी सर्विसेज भी दे रहे हैं, मार्केटिंग भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं. दूसरी स्लाइड में नीचे गए तो इन्वेस्टमेंट में हम स्टार्टअप्स को भी हेल्प करते हैं, हम मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं. और उसी में नीचे उन्होंने आके लिखा हुआ कि हम जो है जी PSX में इन्वेस्ट करते हैं.
अच्छा.
और हमारे बड़े कंफर्टेबल रेट्स हैं, हम गारंटी नहीं कर रहे लेकिन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट हम आपको, और उन्होंने उसमें एक ब्रैकेट बनाया होता, उन्होंने कहा अगर आप 5 लाख करेंगे तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर क्वार्टर 3.5 लाख रुपए. 5 लाख पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न पर क्वार्टर, यानी कि एनुअलाइज्ड आपका पता नहीं कितने 100% बन रहा है, ठीक है. अच्छा मैंने वो पढ़ा, मुझे समझ आ गई कि यार गेम क्या है कि स्टार्टअप तो ये तो वो सारा वो फ्रंट है. आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब एक दफा आ जाएगा उसको लपेट 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 पीछे आके कहेंगे कि यार भाई दबाई, अच्छा आपको समझ नहीं आ रही, आप ऐसा करें अपना पैसा हमें दें, हम इन्वेस्ट करके आपको देते हैं, ठीक है. वो पहले क्वार्टर में 5 लाख में से आप ही को आपका 3.5 लाख वापस देंगे और फिर कहेंगे कि यार अभी आज की तरह मार्केट डाउन है, मीनवाइल और लोगों को लेकर आओ. करते करते इट्स अ पोंजी,
ट्रिगर इफेक्ट,
ट्रिगर इफेक्ट. मुझे ये बात मालूम थी, आज अगर मैं आता हूँ और मैं आपके, आप आके मुझे कहते हैं ना, आप यहाँ पे बैठे हुए आप कहते हैं यार मेरा लैंडस्केपिंग का बिजनेस है, मेरा बिजनेस इतना अच्छा जा रहा है, मैं गारंटी देता हूँ कि यार आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें और मैं आपको 20% गारंटी रिटर्न दूंगा, ठीक है. तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने आके कहना है कि यार ये देखो सूद मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि लिजिट बिजनेस है, आप एक लिजिट प्रोपोजिशन कर रहे हैं, लिजिट वो कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं उन साहब को लेकर आता ना और वो आके पूरी कहानी तोड़ते तो यही ऑडियंस जाती और जाके ना
पैसे
करोड़ों रुपया लगाती.
इधर तो डबल से ज्यादा आ रहा है एक साल में,
एक साल. सो देयर इज दिस वियर्ड डाइकोटमी ऑल्सो वेयर जहाँ पर लिजिट है ना वहाँ पर बिकॉज द मनी इज 20% सो इट डजंट साउंड दैट अपीलिंग, तो उसमें चार और मीन मेख निकाल के ना आउट कर दो. लेकिन जहाँ पर पैसा क्रेजी आ रहा है ना वहाँ पर इस्लाम से इस्लाम थोड़े 2 मिनट के लिए साइड पे, पहले पैसा डबल करो.
मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि जहाँ पर ना परसेंटेज आ जाती है ना इतना परसेंट, लोग उसको ना परसीव कर लेते हैं फिक्सिंग इंटरेस्ट. और अगर कोई ये कहे कि हम आपके पैसे से आपको 2-3 लाख रुपए महीना दे सकते हैं,
हाँ,
और आप एक्चुअली कैलकुलेट करें और वो भी फिक्स बन रहा हो लेकिन लोग उसको
नहीं कंसीडर कर रहे, दैट इज ट्रू,
परसेप्शन,
दैट इज वेरी ट्रू. कि अगर मैं 5 लाख के ऊपर बोलूं कि यार मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपया दिया करूंगा, वो 20% है, 20% एनुअलाइज, तो कितना परसेंट
कितना हो गया, पर क्वार्टर समझ लेना,
पर क्वार्टर समझ ले. हाँ
तो लोग उस, जब आप बोलोगे ना 12%, तो कहीं ना कहीं वो जो परसेंटेज का माइंड है ना, ये मेरी, मेरा व्यू है, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिधर आप ये बोलोगे ना उधर पब्लिक
सेट हो जाएगी.
अगर आप बोलोगे ना 10 लाख रुपए लगाओ तो 1.5-2 लाख रुपए तो मैं दे ही दूंगा, वो उस वो अगेन माइंड में जो कह रहा था ना, माइंड पता किधर चल जाएगा, अच्छा 1.5 लाख रुपए, अच्छा 1.5 लाख रुपए आएंगे, 12% तो यार ये फिक्स है. तो ये आई थिंक एक ये चीज है जो कि थोड़ा सा समझने में लोगों को टाइम लगता है.
मेक सेंस.
ठीक है. दूसरी चीज और इंटरेस्टिंगली मुझे याद पड़ता है बहुत अर्सा पहले एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहरहाल उसका कुछ जो उसका वो था ना
स्ट्रक्चर
वो कुछ ऐसा था कि आप पैसा डालें हम इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको देंगे. और यही हुआ था, कुछ फैमिली में लोग थे उन्होंने डाले तो दो क्वार्टर्स आए, तीसरे क्वार्टर वो हमारे घर पहुंच गए, यार आप भी डाले बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं. ठीक है ना. अब उनका कोई नाम ही कुछ इस तरह का था कि हम पे हमेशा के लिए आप इतवाद करें, यू नो द नेम इटसेल्फ साउंडेड लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, यू नो रिलाय ऑन अस फॉरएवर, यू नो समथिंग लाइक. और बड़ा कोई फैंसी सा ऑफिस है, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेस अगो. ठीक है ना. तो इस तरह की चीजों को लोगों को समझना कि एक तो जहां पे चीज ये है ना, जहां पे इट साउंड्स टू इजी,
इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इट्स नेवर ट्रू.
ये फैक्ट है. और यही एक चीज है जो लोगों को आई थिंक, बट पता है क्या, ग्रीड इज अच्छी बात है लेकिन ग्रीड द राइट वे, ग्रीड टू लर्न मोर, ग्रीड टू ग्रो मोर, ग्रीड टू अर्न मोर स्ट्रक्चरली, नॉट ग्रीड टू फिक्स महीने के 2-2 लाख और फॉरगेटिंग की कैसे कर रहे हैं
सर. इसीलिए ना मुझे ये होता है यार ग्रीड फॉर, सो मैंने ना लास्ट ईयर आई रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी, द कोर फंडामेंटल ऑफ मनी. मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स भी ना समझे, पैसे को समझे ना. और मैं गया और मैंने जाके पढ़ाना शुरू किया कि यार अर्ली लेट 1800s में किस तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आए, उससे पहले तो सिक्के चल रहे थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आए, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे श्रिंक होते होते नोट बन गया,
नोट जो है
आईओयूज पे आ गया. उसके बाद फिर उस नोट के ऊपर, नोट भी कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है या जिस कंट्री का है, उसे मैंने पढ़ना शुरू किया कि यार इस पे लिखा क्या होता है. तो पता लगा जी हाँ मिले 1000 के ऊपर मुतालबे में मिलेगा, क्या मिलेगा. अच्छा जी पता लगा वो गोल्ड मिला करता होता था उस जमाने में,
बैक्ड बाय गोल्ड था.
तो अमेरिका का सिस्टम समझा के अच्छा जी अमेरिकन आए, उन्होंने आके पूरी दुनिया में आके कहा कि यार गोल्ड को साइड पे रखो, गोल्ड हमें दे दो और ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ.
कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की कोलैटरल खत्म हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया.
अब फिर इवेंचुअली कि जी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, गोल्ड बैग खत्म हो गया, कैश रह गया. अब आज की जो पॉपुलेशन है ना जो दुनिया की, वो लार्जली उसको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि एक्चुअल में हमने कोई काम करना है. बार्टर जो था ना वो बड़ा अच्छा सिस्टम,
वो अच्छा सिस्टम,
मैं किन्नू बनाऊंगा आप केले बनाएंगे, हम शेयर करेंगे और सेट हो जाएगा. अब मसला ये है कि लोगों को ये सेंस ही नहीं है कि यार मैंने कुछ बनाना है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू मनी. वो बस कहते हैं मैंने पैसा बनाना है. मुझे जब भी कहा गया था ना बस सर मैंने पैसा बनाना है, कैसे बनाऊँ, तो कहता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय मैंने पैसा बनाना है. राइट. आप कोई वैल्यू जनरेट करो. ग्रीड फॉर वैल्यू बहुत अच्छी चीज है. मैं चाहता हूँ
एग्जैक्टली
कि मैं ना दुबई का
इंडस्ट्री बिल्डर
बनूं. हाँ मैं बिल्डर बन जाऊँ, मैं प्रॉपर्टी नहीं, मैं कहता हूँ मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं इतनी बिल्डिंग्स बनाऊं.
फ्लिपिंग नहीं करो,
हाँ
बट कुछ बना लो,
कुछ
बना लो, कोई डेवलपमेंट कर लो,
कोई डेवलपमेंट कर लो. जब आप उसको पैसे पे करते हैं तो सर पैसा तो चार प्रॉपर्टी को लाइनें ड्रॉ करके भी मैं पैसा बना सकता हूँ.
बिल्कुल.
लेकिन मैंने वैल्यू एक्चुअली कोई जनरेट नहीं की, पैसा मैंने बना लिया. सो मैं जनरली लोगों को ये कहता हूँ कि यार इफ यू आर गेटिंग इनटू एनीथिंग, आपके पास भी अगर कोई आ रहा है ना और वो आके कह रहा है, आप कह रहे हैं यार पैसे दो मैं तुम्हें पैसे डबल करके देता हूँ, तो उसको ये सवाल करने चाहिए अच्छा क्या कर रहे हो, कैसे करोगे, उस पैसे को किधर इन्वेस्ट करोगे, क्या सिस्टम होगा, कोई स्ट्रक्चर तो मिलेगा, कोई वैल्यू तो होगी,
वैल्यू क्रिएट हो रही है.
हाँ वहां पर वैल्यू, ग्रीड की वैल्यू, नॉलेज फैलाने की वैल्यू की ग्रीड, इन सारी चीजों की ग्रीड इज ग्रेट. पैसे की ग्रीड इज आई फील लाइक इज अ इज वेयर अ प्रॉब्लम राइज़ेस.
मेरे ख्याल में इधर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं प्ले में. एक चीज तो ये है कि लोगों को बचपन से लेकर बड़े होते तक ना एक ही चीज सिखाई जाती है, तूने बड़ा होके पैसा कमाना, तूने तालीम हासिल करके अच्छी जॉब लेके पैसा कमाना. व्हाट लैक्स आई फील इज के आज आप अपने किसी बच्चे को बड़ा करते हुए ये बताओ ना कि तुमने बड़े होके कुछ ऐसा करना जिसमें वैल्यू क्रिएशन हो, जॉब्स हो, कुछ बनाओ, कोई प्रोडक्ट बनाओ या कोई प्रोडक्ट को रिफाइन करो और उसको यू नो पाकिस्तान का लेबल दो या कोई लेबल देके बनाओ. वो जब तक वो जो सीड है ना वो शुरू से माँ बाप डालना नहीं शुरू करेंगे ना वो. और शायद यू नो हर घर में यही होता है आजकल के अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल और पर्पस क्या है, अच्छी जॉब,
अच्छी जॉब, टाइटल जॉब हो, बड़ा आदमी बनो टाइटल वाला वो.
और क्या और पहली चीज आप देखो किसी भी जगह पे कोई फंक्शन होता है तो व्हाट डज अ प्राउड फादर बोस्ट अबाउट, मेरा बेटा इतने की
जॉब कर रहा
है. फंड अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, पैसा. एज अपोज टू मेरा बेटा
कितना हुनरमंद है, कितना स्पेशलाइज्ड है,
चीज से कुछ सीख गया है और उसकी वजह से तीन और लोगों को सिखा गया, ठीक है ना। और ये नहीं है, शायद हम भी ये गलतियां करते हैं, लेकिन आई थिंक ये सोसाइटी एज अ होल जो है ना उसको चेंज करना होगा। स्टॉप चेसिंग मनी, चेस विजन, क्रिएट वैल्यू, मनी विल फॉलो।
मनी विल फॉलो, लाइक वैल्यू। अगेन दिस इज नॉट मी ट्राइंग टू बी अ कम्युनिस्ट एंड सेइंग मनी इज बैड, राइट? इट्स जस्ट All I'm saying is when you follow value, the money that value gets converted to is a lot more sustainable.
And it's forever.
It's forever, absolutely. Versus के आपने आज जाके कहीं without thinking के ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैसा तो बना लिया, छह साल बाद क्या होगा, आठ साल बाद क्या होगा, क्योंकि वो पंप एंड डंप जो भी होती है वो थोड़े अरसे के लिए होती है, उसका डंप हमेशा आता है।
यकीन करो जब इंसान जॉब कर रहा होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बात बोली थी, लेकिन बड़ी अच्छी बात थी कि जब आप काम जॉब कर रहे होते ना तो यू आर One salary away from being poor.
Yeah.
और उस वक्त आपको आप एक अलग जोन में एक अलग जूम में चल रहे होते हैं कि मेरी इतनी की जॉब है, मैं ये वो। अच्छा, वो जॉब की वजह से स्टेटस भी आ जाता है। अब अगर आप ऐसे बंदे हो जिसमें बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे तो आप और वो मनी
हाँ
थोड़े और चौड़े होकर चल रहे होंगे कि यार ये है ये। लेकिन अचानक कोई चीज चेंज होगी ना नीचे से, देन यू विल रियलाइज कि यार मैंने अपना टाइम एफर्ट गलत रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किए या गलत जगह पे या गलत प्रोजेक्ट्स पे। हाँ। अगर वो टाइम और एफर्ट किसी ऐसी चीज में किया होता जो छोटा सा बड़ा हो चुका होता,
हाँ।
शायद वो हो जाता। इसमें टाइम लगता है। देखो बिजनेस के साइकिल होते हैं, 1000 डेज इज अ साइकिल। अब वो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो आपको टाइम देना होता है, बट जब वो चीज एक ऐसी फंडामेंटली अच्छी चीज में लग जाए ना, आपको जरूर उसका फायदा देती
है और कंपाउंडिंग में देगी, डेफिनेटली
देगी।
इसमें बड़ी अच्छी मिसाल है आपने दी वो जॉब वाली ना, वन पे चेक अवे फ्रॉम वो, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मीडिया, तो माय पेरेंट्स बीइंग लाइक ऑल पेरेंट्स, वो दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी, दे वुड रीड एवरी कमेंट, दे वुड लिसन टू एवरी पॉडकास्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट समवेयर ना माई मदर वॉज ऑलवेज वरीड के यार ये इतनी मीडिया में चला गया है, बिजनेस हम बिजनेस वाले थे नहीं, इस्लामाबादी लोग हैं, जॉब पेशा पूरी जिंदगी नौकरी करनी, तो उनको था कि बेटा नौकरी करते रहो ना साथ साथ। मैंने कहा माँ मैं सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं कि मैं यू नो बस 8-12 घंटे नौकरी भी करूँ फिर मैं अपना ये भी सारा धंधा चलाऊँ। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आप समझे मैंने ना, मैं CNN पे आ गया, बेटा बहुत अच्छी बात है बट बेटा नौकरी। मैं 2021 में मैंने पाकिस्तान चीफ आर्मी स्टाफ ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दे दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा लेकिन नौकरी। खान साहब आ गए पॉडकास्ट के ऊपर, पूरी वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान ने देख ली, अम्मी को कॉल कर आपके बेटे ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है बेटा पर नौकरी। तो एक पॉइंट पर ना मैंने क्या किया कि, और जब मैं काम कर रहा था, मैं नौकरी की मैंने 2 साल Teradata में, एक डेटा एनालिटिक्स की कंपनी, बड़ी काफ़ी वेल रिप्यूटेड MNC। तो अब मुझे पता है मेरी उस वक्त 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, और हर थोड़े से बाद ना रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग खत्म ही नहीं होती,
नहीं होती वो।
होती
इट्स ऑन गोइंग,
इट्स ऑन गोइंग फॉर एवर रीस्ट्रक्चरिंग, आज भी हो रही है वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग, जो जानने वाले वहाँ बैठे। तो हर 3-6-8 महीने बाद पता लगता था यार वो रिडंडेंट हो गया, वो बाहर हो गया, वो रिडंडेंट हो गया, वो बाहर हो गया। अम्मी को तो ये नहीं पता, अम्मी को पता ये जॉब लिप लगे में। तो एक दफा अम्मी ने इसी तरह मुझे कॉल की, शी मूव टू द US एट द टाइम, शी कॉल्ड मी, शी लाइक अच्छा क्या सीन है। तो मैंने बोला अम्मी को, मैंने कहा वहाँ मैंने ना जॉब पकड़ ली है। उन्होंने कहा अच्छा कैसे? मैंने कहा मेरा जो बिजनेस है ना, मैंने उसको रजिस्टर कराया है, और जितना भी मैं पैसा कमाता हूँ ना, मैंने अपने 4-5-6, और मैंने वाकई ऐसे, मैं 4-5-6 दोस्तों को कॉलें की, कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ एवरेज कर रहे थे, कुछ बिलो एवरेज कर रहे थे, सबसे मैंने पूछा यार सच सच बता तेरी तनख्वाह कितनी है। अच्छा बिजनेस में जब आप अपना हम जैसे होते ना लौंडे लपाटे टाइप, तो पैसा आ रहा है पैसा उड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा डिसिप्लिन के लिए भी बड़ा अच्छा था, तो मैंने सबको कॉलें मिलाई, पता लगा यार कोई 80,000 कमा रहा था उस वक्त, कोई 3 लाख रुपये कमा रहा था उस वक्त। मैंने सारा लेके एवरेज निकाली, 1,30,000 रुपये, 1,50,000 रुपये,
1,50,000 की एक एवरेज।
मैंने अपना सारा का सारा पैसा डाला कंपनी के अंदर, और मैंने अपनी तनख्वाह निकाली, और मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ
मैं नौकरी पे लग गया,
मैं नौकरी पे लग गया हूँ, और 3 साल तक मुझे वो फायर नहीं कर सकते, जितना पैसा उसमें होता था ना मल्टीप्लायर के साथ। तो मैं हर दफा मुझे कॉल करती थी, बेटा बिजनेस कर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ 3 साल तक फायर नहीं होने वाला।
आई थिंक तुमने स्मार्टली ये कर लिया, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो पीछे रख
दिया, मैंने कहा 3 साल तक आप टेंशन ना करें, मेरे पास एक धंधा नहीं होता, फारिग बैठा रहा हूँ, 3 साल तक नौकरी लगी है माँ। दैट वॉज मेरी अपनी साइकोलॉजी को उसने बदला, और माई पेरेंट्स जस्ट वर लाइक अच्छा चले रिलैक्स हो गया। एंड आई थिंक आखिर में ये वही गेम है कि यार नौकरी के ऊपर भी आपको क्या पता वो कंपनी वो कल फारिग करे परसों फारिग करे, कम से कम आज तो मेरे पास 3 ईयर का आउटलुक है।
बिल्कुल, लेकिन देखो मैं ये भी एडवोकेट करूंगा, नौकरी इज नॉट बैड, इट्स ग्रेट। आपको जो लर्निंग मिलती है, आप जो चीज़ें सीखते हो वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। आप स्टार्ट करो, या तो इनिशियली आपको पता हो कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है, विच इज़ ग्रेट, अगेन आपको दो बिजनेस करोगे, गिरोगे, तीसरे में थोड़ा सीखोगे, बिकॉज जो चीज़ आपको फेलियर सिखाती है ना वो आपको कभी भी सक्सेस नहीं सिखा सकती. और ये 100%. मैंने देखा है, यू नो यू हैव टू लूज इन ऑर्डर टू विन. तो या तो आप ये वाले ट्रैक पे चले जाओ या फिर आप एक दो तीन जॉब्स करो, एक्सपोजर एक्सपीरियंस हासिल करो एंड देन अपने एंटरप्रेन्योरशिप.
और वो सर्कमस्टेंशियल भी है ना, सम पीपल डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट, तो वो जॉब से बहुत चीजें सीख लेते हैं, किसी और के पैसे पे सीख रहे हैं. वो बेसिकली अगर ये माइंडसेट उन्होंने रखा हुआ है
कि हम लर्निंग कर रहे हैं,
हम लर्निंग कर रहे
हैं, नॉट हम पैसे कमा रहे
हैं. एब्सोल्युटली
वो चीज आते आते भी टाइम लगेगा, लेकिन अब लोग स्पेशली जेन जी आई थिंक दे हैव पिक्ड इट फास्टर देन एनी अदर यू नो
जनरेशन
एंड दे आर डूइंग इट. दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन पीपल्स थॉट्स आइडियाज. उनके पैसे पे वो अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, कनेक्ट करते हैं. चार लोग बैठते हैं, कंपनी जैसे करते हैं, कोई डिजिटल मीडिया फर्म बना देता है, कोई कहता है कि हम फाइनेंशियल एनालिटिक डेटा जो आपको वो कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू की हायर एन अकाउंटेंट, हम आपकी पूरी बुक कीपिंग कर लेंगे.
हाँ.
कोई कहता है हम यू नो वी कैन डू कंसल्टिंग ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स. सो आई थिंक दे आर डूइंग इट स्मार्टली एंड प्रॉब्ली फास्टर.
एब्सोल्युटली. टेल मी अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस. यू वर्क्ड फॉर मे बी 20 years.
So 20 years amongst different banks in Dubai.
Financial institutes and banks and stuff like that. And then you decided, ke yaar, nahi, achha, I wanna be an entrepreneur. And then you decided to start two very... So normally assume ye kiya jayega ki aap bank se nikal rahe hain, to aap koi investment ka koi brokerage khol lenge, kuch left right khol lenge. Mujhe, one of the reasons why I got very intrigued when, you know, aapki profile mere paas sabse pehle aayi, ki you're doing two businesses. A hardcore finance guy is doing a fashion brand and is doing a landscaping business. These are two very unique, very different, not the sort of person that you know normally one would assume as the business owner. Tell me about these two brands and the thought behind why after 20 years of doing a job and being fairly successful at it as well, you decided ki ye nahi kuch interesting karna hai.
So great question, not because ke wo mere se taluk rakhta hai, but actually I know ke kitna bada आपको अपने ऊपर बिलीव सिस्टम करना पड़ता है टू गो इनटू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू हैव नॉट टच्ड. वही वाली चीज़ थी जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था. आई डिड नॉट वांट टू चेस मनी. मैं नहीं चाहता था कि आइडियल इजी सॉल्यूशन क्या है. एडवाइजरी तो आज भी ऐसा नहीं, एडवाइजरी नहीं होती. कोई क्लाइंट कॉल कर लेता है, यू हेल्प देम आउट, लेकिन उसको कब तक सस्टेन कर सकता था. एक दो पांच
और अगर कर भी लेते टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो दैट्स समथिंग जो कि आप सोते हुए भी कर सकते.
वो right? तो आपको आती है ना, वो तो आपने 20 साल कर ही ली, राइट? अब चैलेंज ये है, कोई चीज डिफरेंट,
ठीक
है. अब जहां तक लैंडस्केपिंग का ताल्लुक है, वो तो आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, यू नो माई टाइम इन अफ्रीका क्लोज टू नेचर, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होता गया. लेकिन वो ज्यादा बिल्डअप कहाँ हुआ, इन अ प्लेस लाइक दुबई जहाँ पे लैंडस्केपिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है.
जहां पे यू रियली हैव टू आर्टिफिशियली बिल्ड द नेचर
वैल्यू एडिशन ना. अगेन ये नहीं है कि बने बनाए ट्रीज को आपने मैनेज
कर क्रिएट,
ठीक है ना. दूसरी चीज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैज ग्रोन और हर होटल को लैंडस्केपिंग की जरूरत पड़ती है. तो मुझे एक नीच नजर आई एंड मुझे नजर आया कि इसके अंदर कुछ लर्निंग ज़्यादा हो सकती है. और आपके साथ जब रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो एफर्ट होती है, बट आप इमेजिन करो, एक आपको एक्सपोजर मिल रहा है डिफरेंट होटल्स का, बिल्डिंग्स का, कनेक्टिविटी, दूसरा आपकी कंपनी की प्रोफाइलिंग, तीसरा यू आर एडिंग वैल्यू. तो लैंडस्केपिंग आई थिंक वहां से मेरे
और ये जनरली B2B ही होता है मोस्टली, या बड़े घरों के विलास के उनकी भी होती है.
अभी हम B2B पे ही फोकस कर रहे हैं,
राइट.
आगे जाके वी विल इनहांस इनटू B2C और उसमें क्या करेंगे हम कि वी विल एड डिजिटल एंगल टू इट एंड आई थिंक विल प्रोबब्ली बी द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग इन एन ऐप ऑन अ लैंडस्केपिंग कंपनी, ताकि B2C को जरा यू नो जस्ट
इजीली, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है.
बिल्कुल. तो हम
राइट,
दैट्स वन ऑफ द थिंग्स.
बट इन टर्म्स ऑफ, सो व्हाट्स द प्रोडक्ट हियर, जो नई बिल्डिंग बन रही है वो लैंडस्केप करा रही है, या कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है वो कहती है कि यार हर साल हमारा सिस्टम चेंज होना चाहिए या इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो वो भी होता है.
सो टू गिव यू बैकग्राउंड, द फंड एक मैंने क्रिएट कर दिया था MAFCO के नाम से, और उसके अम्ब्रेला के नीचे एक चीज आई विच लुक्स एट लैंडस्केपिंग, स्विमिंग पूल, नॉट ओनली मेंटेनेंस ऑल्सो कंस्ट्रक्शन. तो अगर कोई नई बिल्डिंग आ रही है उसके अंदर स्विमिंग पूल बनेगा,
ठीक है,
उसमें लैंडस्केपिंग लगेगी लगेगी, वो हार्डस्केप हो गया, तो स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन हो गया, देन जब वो बिल्डिंग बन गई उसकी लैंडस्केपिंग को मेंटेन करना, स्विमिंग पूल को मेंटेन करना, तो
सब्सक्रिप्शन भी आ गई,
सब्सक्रिप्शन भी आ गई,
राइट,
और आपके पास इन्हीं लोगों ने मजीद और बिल्डिंग्स डेवलप करनी होती है, तो वंस यू एम्बेड विद फ्यू डेवलपर्स आप चल पड़ते हो, दैट इज वन पार्ट ऑफ मैफको,
राइट,
और आई एम प्राउड टू से कि मैफको के अंदर यू नो कंसिडरिंग समबडी फ्रॉम पाकिस्तान और हमने उसको एक कॉन्सेप्चुअली कंसीव किया, मैनी फ्रेंड्स जो कि इधर से बिलोंग करते हैं दे केम इन दे इन्वेस्टेड विद अस, एंड एक चीज़ हमने क्रिएट की जो कि नूरिया ब्रांड है इन पाकिस्तान,
राइट,
एंड आई एम प्राउड टू से कि बहुत सारे इधर के लोग जो कि कभी पाकिस्तान भी नहीं गए दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट बिकॉज अगेन फैशन इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ पाकिस्तान, लोग वैसे ही जनरली हैप्पी गो पीपल है ना, दे लाइक कपड़े खाना पीना, तो वो चीज़ प्लस उसके अंदर मेरी अपनी क्रिएटिविटी बिकॉज एज अ वेरी यंगर वर्जन ऑफ मी जब हम लाहौर में रहते थे तो माई ग्रैंड फादर यूज टू गेट दी आर्मी यूनिफॉर्म स्टिच फॉर वन ऑफ द GCC कंट्रीज हियर, तो मैं उनके साथ जाता था उन फैक्ट्रीज में, तो वो कहीं ना कहीं द सेकेंड जनरेशन डिड नॉट पिक इट अप,
राइट,
हियर केम मी आई थिंकिंग के मैं करता हूँ, तो दैट वॉज समवेयर इन द DNA एंड आई
इम्प्लीमेंटेड. Did you have any background in fashion? Yeah, did you just plunge right into it?
I have not got a very any formal degree in fashion, लेकिन I believe कि अगर आप aesthetic skills आपके अच्छे हों you can identify. For example, नूरिया की कोई भी collection के अंदर I and my partners will have a final input. We look at all the designs. We look at it from what the market is throwing, what the public wants.
Probably when I say background, I'm not saying professional or educational. Main isko flip karta hu. A very good friend of mine, he runs this brand called Manto. It's gotten really popular recently.
It is.
And I was actually very closely working with him when he was setting it up. To us time ke upar mujhe wo pura main experience kiya ke उसके दिमाग पे एक चीज स्टक थी और ये बाय द वे हार्डकोर मेमन फैमिली यू नो
वेरी बिजनेस आता है
जिनको बिजनेस आता है और वालिद साहब हेड ऑफ द मेमन बिजनेस एसोसिएशन भी हैं और बड़ी पुरानी वो है और इनका यू नो कंस्ट्रक्शन एंड ट्रैवल और इन सारों में बिजनेस इंटरेस्ट हैं फैशन में नहीं राइट एंड सो ही कम्स टू मी एंड ही इज लाइक यार मैंने ना मुझे लखनऊी कुर्ता बड़ा पसंद है और पाकिस्तान में कोई अच्छा लखनवी कुर्ता नहीं मिलता, सो कॉलर वाला या तो इस तरह का मिलता है या वो क्या कहलाता है शेरवानी कॉलर मिलता है, हाँ तो वो नहीं मिलता, तो मुझे ना मुझे वो बनाना है एक 5-6-8 महीने उसने 3-4 सूट बनाए मुझे भी भेजे, फिर हमने बैठ के पूरा प्रोसेस फिगर आउट किया कि अच्छा जी वो CMT यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, एनीवेज वी टुक इट फॉरवर्ड एंड उसने जो है वो जाके ही लाइक ही वॉज सो हार्ड स्टक ऑन के यार मुझे क्या बनाना है, इन द सेंस के वो गया उसने जाके वॉश एंड वेयर का जो सप्लायर ढूंढा, उसने पहले कभी इस तरह का नहीं बनाया था, उसने डाउन टू द लास्ट थ्रेड वो घुस गया अंदर कि कितने परसेंट इसमें पॉलिएस्टर होगा, कितने परसेंट कॉटन होगा, कितना परसेंट ये होगा, उसके कलर्स क्या होंगे, वो करते 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 आई सॉ द ट्रांजिशन ऑफ अ हार्ड कोर बिजनेस मैन कन्वर्ट इन टू ए फैशन यू नो जिस कहते हैं वो एक्सपर्टीज Starting off with this one thing, यार मुझे लखनवी कुर्ता चाहिए, right? When you were getting into, tell me that story, के at some point आप बैठे होंगे, आपका एक fund है, fund में पैसा आया हुआ है, लोगों ने invest करना है, किया हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि यार मैंने कुछ करना है, landscaping मैं अच्छे से कर रहा हूँ, what should I do next? And then why does the idea of a fashion label pop up? You could be doing 10 different things, right?
So दो तीन चीजें एक साथ हुई थी. एक उन दिनों आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान अ लिटिल मोर देन आई यूजली डिड, तो मैं जब भी मॉल्स में जाता था मुझे नज़र आता था कि 70% ऑफ आर मॉल्स आर ऑक्यूपाइड बाय फैशन ब्रांड्स, तो उससे एक चीज़ तो आपको पता है कि यार इस बिजनेस में इतने मार्जिन है कि वो इतनी बड़ी रिटेल स्पेस अफोर्ड कर सकते हो,
राइट
नाउ
And these are the most expensive retail spaces, Dolman City malls and Packages mall.
एक तो आपको वो क्लिक करता है कि कुछ तो है,
मार्जिन कॉल है,
अब इसके अंदर जाना है, राइट? तो एक ये चीज पाक हो गई. देन आप कुछ कपड़े यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे एग्जीबिशन होते हैं, लेकिन आप जब कुछ कपड़े देखते थे और आप उनको फील करते थे, आप उनको समझते थे, तो लिटरली थिंक यार पाकिस्तान जो कि टेक्सटाइल का हब है, और ऐसे नहीं कि सब बुरे, कुछ बहुत प्यारे बहुत अच्छे, लेकिन कुछ गैप था,
राइट?
एंड आई यूज टू थिंक वी गॉट कॉटन, وی آر نون فار ٹیکسٹائل اینڈ ویو گاٹ دا پاپولیشن خواتین, وی کین ڈو اے بیٹر جاب. اور تب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اسی لیے جو ایگزسٹنگ برانڈز ہیں وہ یہ ریٹیل اسپیس افورڈ کر سکتے ہیں بیکاز مارجن کمبائنڈ وتھ پاپولیشن اینڈ استھیٹک اسکلس. بیکاز پاکستانیز آپ دیکھو ان کا ڈریسنگ, ان کا آج بھی ایون وتھ واٹ ایور لمیٹڈ بجٹ آن ایونٹس دے ول ناٹ شائے ہوئے کہ ہمیں اچھے کپڑے نہیں لینے. اور ضروری نہیں کہ آپ برانڈ کانشیس, اچھے کپڑے اچھے ڈیزائن وہ ایک چیز ڈی این اے میں ہے. وہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ, یو نو شاید ڈفرنٹ اسٹائل فالو ہوگا, کراچی میں ڈفرنٹ اسٹائل ہوگا, لاہور میں ڈفرنٹ, اسلام آباد میں ڈفرنٹ, لیکن اٹ از اسٹل دیئر ان آر ڈی این اے,
ٹھیک ہے نا.
تو وہ میرے اندر بھی تھا, پھر کمبائنڈ وتھ بزنس. اور دوسری بات, تیسری بات, آپ نے ایک بزنس سیٹ اپ کر لیا تھا, آپ نے اس کو چرن کر کے دیکھ لیا, تو اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یو آر ناٹ آن دا رانگ ڈائریکشن, وہ تھوڑا سا آپ اوور کانفیڈنٹ بھی کہہ سکتے ہو. سو دیٹ واز اے کمبینیشن فار می فرینکلی.
ٹیل می دی اوریجن اسٹوری, بیکاز یو ہیو ڈن بزنس ان دبئی, you've worked in Dubai, you've done business in Dubai. Yesterday I met someone who's been here for 40 years with small short stints in Australia and the UK, and he's doing a business as well. He said, I went to Islamabad and I stayed there for six months, and he was like, yaar main to meri to bas ho gayi, you know. And I was like, why? He was like, you know, professional ethics, this and that, office mein log chapla pehen kar aa rahe hain to ye hai, to like basics jo generally global standards hote hain koi follow nahi ho raha. So it's very difficult for someone who's sure he's a Pakistani, but he's an overseas Pakistani, right? So you went in and you got into a Pakistan business for Pakistan, in Pakistan, for Pakistan. Tell me how you went about it. You know, did you go and hire a team and create a structure jisme aap jo 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 problems thi unko aapne apne aap ko sort of you know protect kar liya ke yeah, you know there's a team on ground that dealing with the problem and I'm managing that. Yeah, what was happening there?
So first of all, though, you are nobody without a team. So if you think ki aap single handedly puri duniya ya koi bhi cheez fatah kar lenge, wo galat hai. You need bhale wo do log ho, but you need very honest and transparent people to be with you. So I think ek to cheez pe main wahan blessed hu, I've got a very good friend of mine who spearheads the day-to-day operations and everything of the brand. So we...
And he's from there from the start?
He's there from the start and he's the CEO of the brand. So he was here with us in Dubai. So the story goes 20 years back where we worked together in various organizations. So itni purani relationship. Plus his in-laws are very detail-oriented in the similar sector.
Right.
So ek wo cheez saath aayi. Dusri cheez... پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے, لیکن اس کے بہت بڑے پلسز بھی ہیں. ان ریگولیٹڈ اکانومی کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں, وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں.
رائٹ,
یو نو آج جو بھی بولو کچھ نہ کچھ کر کے دیر از اے وے اراؤنڈ اٹ, اینڈ شاید وہ چیز ہمارے لیے نا ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے ایز کنٹری مین, کہ اگر آپ بہت اسٹرکٹ بائی دا رول چلیں گے نا تو ہماری بہت ساری پبلک, بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ڈزنٹ نیسیسری مین کہ آپ غلط کام کر رہے ہو, اٹ جسٹ مینس کہ دیر از اے وے اراؤنڈ آف اٹ, جو کہ کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا. یہاں پہ یا کسی بھی اور ملک میں کوئی لا
اگر نہیں ہے تو نہیں ہے,
نہیں ہے تو نہیں ہے. رائٹ, اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو شاید نہیں اس چیز کو وہ کر سکتے. فار ایگزامپل کووڈ میں اگر بہت ایکسٹریم لاک ڈاؤن لگ جاتا تو شاید ہمارے بہت سارے لوگ, یو نو, کچھ کنٹریز نے ڈراپ کیا اور پھر سفر بھی کیا, اینڈ ہم نے اس ٹائم میں تھوڑا سا بہتر چیزوں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن, سو آئی لک ایٹ اٹ کہ یار ٹھیک ہے کچھ پرابلم بھی ہیں, کچھ ادر چیزیں بھی, لیکن دیر آر گڈ تھنگز اراؤنڈ اٹ. تو اٹ آل ڈپینڈز آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. باہر رہے ہیں آپ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا, میں تو اپنے آپ کو نہیں کبھی بھی اتنا ڈسکنیکٹ کر سکا. آئی آلویز وینٹ بیک. جب ہم نے برانڈ کو اسٹارٹ کیا تو آئی میڈ شیور کہ ہر دو مہینے بعد آئی یوز ٹو بی دیئر فار اے پیریڈ آف اے منتھ, دین کم بیک, دین دو تین مہینے بعد. سو وہ ٹائم انویسٹمنٹ, فارمیشن آف دا ٹیم, وہ سب ٹیم کو ہم نے خود ہائر کیا, خود ان کو بتایا کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے, برانڈ کو کدھر لے کے جانا ہے, یو نو, اینڈ ویری ہیپی ٹو سے کہ
جو اس کی اسٹچنگ سارا کچھ ہے وہ سب ان ہاؤس ہے.
ہمارے ان ہاؤس اسٹچرز بھی ہیں, اور جو سیمپلس اور کچھ آرڈرز ان ہاؤس کرتے ہیں, اگر اوور سپلائی ہو جائے آرڈرس کی تو باہر سی ایم ٹیز کے ساتھ ارینجمنٹ ہے تو وہ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, بٹ دیز آر پیپل جن کے ساتھ ہم دو ڈھائی تین سال سے کام کر رہے ہیں.
ہاؤ اولڈ از دس برانڈ
ناؤ؟ اٹس آلموسٹ 3 years اولڈ, بٹ ٹوڈے الحمد للہ وی ہیو 65,000 فالوورز.
زبردست. اینڈ واٹ سارٹ آف, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ سو एक होता है क्योंकि फास्ट फैशन टाइप ब्रांड्स होते हैं. अगेन मैं मंटो की एग्जांपल लूंगा, आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवर शेयरिंग सम ऑफ हिज डिटेल्स, बट वो चूंकि एक फास्ट फैशन ब्रांड है इन अ वे, सो खाडी हो गया, मंटो हो गया, इस तरह के हो गए कि देर बेसिकली देर गो टू ये सप्लायर जो कि फैब्रिक बनाता है, फिर वो उसको उठाएंगे, उसको उठा के वो यू नो कलर करेंगे, और सर्टन सेट ऑफ डिज़ाइन हैं उसको वो उठा के सीएमटी के पास लेके जाएंगे, उससे कहेंगे यार इस तरह का डिज़ाइन करके तुमने फाइनल निकालना है, जो ज़ारा ऑफ द वर्ल्ड करते हैं, राइट, मास प्रोड्यूस्ड. एंड देन देर आर डिज़ाइनर्स देर आर मोर टूवर्ड्स हायर एंड, उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, कुटोर होते हैं कभी कभार, उस तरह की सिचुएशन होती हैं. आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं?
सो एक चीज़ हमने समझ ली थी शुरू में कि यार हमने हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है.
राइट,
आई डोंट नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, बिकॉज उससे ही आप सीखोगे, ठीक है ना, एंड आई डोंट केयर कि कितनी बड़ी या छोटी है. तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमने हर सेगमेंट को ट्राई करना है. हमने प्रेट भी लॉन्च किया, हमने थ्री पीस अनस्टिच भी लॉन्च किया, एंड वी टेस्टेड इट एंड वी अंडरस्टूड कि ये क्या चीज़ है. आज बहुत सारे ब्रांड जो सिर्फ कुट्योर या हाई एंड कुट्योर करते हैं ना, दे हैव एब्सोल्युटली लिमिटेड, दे वुड हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डू अनस्टिच्ड, ठीक है ना. हमने वो भी किया, फिर हमने अपनी प्रेड की कलेक्शंस भी निकाली, फिर स्लोली स्लोली हमने अपने आप को लग्जरी फॉर्मल में लेके आए, ठीक है ना. इस वक्त नूरिया इज पोजिशन फॉर ब्राइडल एंड लग्जरी फॉर्मल, और हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं. लेकिन जो हमारी लर्निंग हुई है इन द जर्नी, उसके लिए हमने क्या किया, वी हैव सेट अप अ कंपनी इन यूके, और उस प्रोडक्ट लाइन को हम आउटसाइड पाकिस्तान लेके जाएंगे फॉर अ वाइडर ऑडियंस हु आर सेटल्ड इन यूरोप एंड यूके एंड अब्रॉड.
एंड जो आपकी करंट, आपने कहा व्हाट वाज द टर्म दैट यू यूज्ड, वेडिंग एंड
ब्राइडल एंड लग्जरी फॉर्मल,
लग्जरी फॉर्मल, सो दैट्स वन डिजाइन वन पीस, और इज दैट वन डिजाइन मल्टीपल सेट्स ऑफ पीसेस?
नो, इट कैन नेवर बी वन पीस, इट विल ऑलवेज हैव अ मिनिमम 24-48 जितनी एक रन में जरूरत होती है. बट डिपेंड करता है, आप पहला रन निकालते हैं 24 का, फिर देखते हैं अगर किसी ड्रेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा या किसी ड्रेस की डिमांड ज्यादा, देन यू गो फॉर अ हायर रन, बट कैन नेवर बी वन और टू पीसेस. वो बिल्कुल ब्राइडल के अंदर एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे द ब्राइड विल कम इन, यू नो, गिव हर अपनी मेजरमेंट्स एंड देन शी चूज द डिजाइन, और उसमें वो प्लस माइनस कर सकती है, एंड दैट इज अ प्योर वन काइंड ऑफ अ ड्रेस.
मेक सेंस. अभी इस वक्त डू यू हैव अ ब्रिक एंड मॉर्टर आउटलेट एज वेल, और इज इट प्योरली सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन?
नहीं, वी हैव एन आउटलेट इन DHA लाहौर. It's very much there, and we are we intend to cover KLI, Karachi, Lahore, Islamabad, and hopefully with that, like I just said, कि हमने UK के अंदर establish कर ली company, and we will go and target one in US, or probably two in US. So that is the
plan. वो भी outlets होंगे?
वो भी outlets होंगे? नहीं, वो भी outlets होंगे, but we just plan to keep it simple from 3 to 7 outlets globally, and then of course you can't negate online, because अब बहुत सारे लोग especially post COVID they're very comfortable on the online platform. ये होगा कि for European market we will probably do the same thing that we had done earlier in Nuria, जहाँ पे हमने
मीना को कवर कर दिया.
हाँ जी, और उसके लिए हम यू नो प्रेट एंड अनस्टिच लॉन्च करेंगे, बट दैट विल जस्ट कम एक्सपोर्टेड फॉर दी ऑडियंस अब्रॉड.
अनस्टिच चल जाती है बाहर, बिकॉज वहाँ पे स्टिच कौन करेगा फिर, वो भी टेलर्स वगैरह का सिस्टम?
फ्रेंकली अभी टेस्ट करेंगे.
इंटरेस्टिंग. यू मेंशनड अर्लियर बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग दैट यू आर गेटिंग इनटू मॉडर्न फैशन, एंड दैट्स अ ग्रोइंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जो कि फैशन स्पेस के अंदर हैं या वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं. आई एक्चुअली वेंट टू सऊदी रिसेंटली, एंड माई वाइफ सेड, यू नो, शी इज गॉटन एन अबाया फ्रॉम देयर एंड शी रियली लाइक्ड इट, सो शी सेड गेट मी, आई आस्क्ड हर, आई सेड क्या चाहिए आपको ना, शी लाइक गेट मी एन अबाया. अब मेरा मसला ये है कि शॉपर्स की भी पर्सनैलिटी होती है, तो एज अ शॉपर मुझे ना रैंडम कोई चीज़ मैं उठा लूँ ना, तो मुझे सेंस नहीं उसकी मेक करती. मैं अगर सऊदी आया हूँ, इट हैज़ टू बी अ सऊदी थिंग. मैं मेड इन चाइना अगर सऊदी से ले जाऊँ तो वो तो मैं दुबई से भी ले सकता हूँ, यू नो. सो आई वेंट इन टू दिस रैबिट होल एंड आई स्टार्टेड सीइंग, कहते अब आया है, अब आया क्या होता है. पहले तो थॉट ये थी कि यार अबाया में क्या ही होगा, यू नो, एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उसमें दो तीन चार कलर्स डाल दूंगा. फिर मैं रैबिट होल में घुस गया.
यू वुड बी सरप्राइज्ड.
और सर उसकी पूरी डिज़ाइनर्स की गेम है. और वो जब डिज़ाइनर्स की गेम में मैं घुसा, तो मुझे पता लगा कि सर 10,000 दिरहम से कम तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना.
बिल्कुल.
वो तो शुरू ही नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं कि चलो 10,000 पे तुम आ जाओ, 20-25 पे तो मैं अच्छा देंगे. और मैं कह रहा हूँ ये चल क्या रहा है यहाँ पर. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड. अच्छा, आई केम बैक, आई डिस्कस दिस विद माय वाइफ एंड देन शी टोल्ड मी, शी सेड लिसन, देयर इज एन एंटायर न्यू जनरेशन. यू मेंशन जेन ज़ी क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, एंड व्हाट्स हैपेंड इज when I was growing up, and I'm 33, most of the people were exposed to the West, and Western culture was getting interesting and famous, right? So jeans was famous, and t-shirts were famous, and they were getting a lot of popularity within the masses.
Modern fashion is getting a lot of
Ab ye scene hai ki you're getting a lot of these girls in hijabs and abayas, and unhone puri vibe bana di hai, off white, off light brown type wo aesthetics hongi, aur unhone mujhe Instagram pe dikhaya ki there's an entire aesthetic Islamic, modern Islamic girl ki ek aesthetic hai. और उसके ऊपर आई सॉ अ लॉट ऑफ गर्ल्स कन्वर्टिंग नाउ, बहुत सारी लड़कियां हिजाब ले रही हैं. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हाउ मीडिया कैन एक्चुअली बी यूज्ड एज अ टूल. हमने तो हमेशा सुना ना कि मीडिया से तो फहाशत फैलती है, जरूरी नहीं है. आप अगर आपके एस्पिरेशनल इन्फ्लुएंसर्स वो जो भी करेंगे वो फैलेगा, और वो मैंने देखा क्या वो हो रहा है, एंड देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस. वो यही है कि आज तक हर कैटेगरी के अंदर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन आ चुकी है. मॉडर्न फैशन में आप जाते हैं तो वही घिसे पिटे कराची की ज़ैनब मार्केट में काले भाई मिल रहे हैं. सो टेल मी अबाउट दैट.
सो यू टच्ड अपॉन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और आई एम ऑन द टेबल हियर, तो मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ. लेकिन नूरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया. व्हाट यू डोंट नो एंड व्हाट आई एम जस्ट डिस्क्लोजिंग नाउ इज के इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग अ मॉडेस्ट वेयर ब्रांड इन दुबई, इन यूएई, विच विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबायाज दैट यू मेंशनड along with the fusion combination of trench coats.
Right.
Something rare, something different to target both the outgoing public which travels in summers to the West and for the population in between all the GCC countries. So you're spot on where you're saying ki modest fashion, aur ye cheez humne pick kar li thi, and that's why the brand is called Nisma. And it is going to be long, and this will be purely e-commerce. Zabardast. And we're going to have orders on the website, but the entire stitching and the entire things is done completely in UAE. There's no
interesting,
it's all in UAE.
How did you, I mean, this must be a costly endeavor.
It is, and we assembled a team,
right?
With the help of Nuri, I was able to get some people who work with me there,
right?
And we got ourselves a production manager here. She supervises the back end of the thing. Designing again is with me and her, and we've come up with a small team. Aur hamari pehli collection ready hai, which is going to be launching now in the next couple of days, with the second collection on the way, purely to hit.
Do you have any photos that you can show me?
I'd
love to see
can,
it, because
but I
I'm not gonna put it on the camera.
Yeah, not a problem. I can show you. I have something.
Because maine, kyunki recently I got into it, so main bada intrigued hua hu ki yaar ye kya hai.
Not a problem. Main aapko dikhata hu. I've got something which again launch nahi hua, but it's there. It's the lookbook of the brand called Nisma. Or ek second, I will show it to you. Yeah, if you see this, and if you just scroll down, you might get a idea of what this will look like. The first collection is all in black.
That's interesting. And this is all done in Dubai.
This is all handcrafted. There's nothing machine work here.
Acha.
Aur ye sirf haath ka kaam hai.
Interesting.
It took us a lot of work to.
And
kind of.
This makes sense because, you know, when I was looking at the abaya collections in Saudi, one of the things that jo mere top of mind mein constantly aa rahi thi na, when I would look at the abayas, so there's not a lot you can do with abayas, right? So normally wo ek choti si kadai hui bhi hai kahin par, it was very subtle. Mere baare mein baar baar ye aa raha tha. Mujhe yaad hai maine pictures bhi apni begum ko khench ke bheji, to maine unko ye bola, maine kaha yaar ye to matlab constantly I could see the sort of work that was done is the sort of work that wedding clothes mein Pakistan mein hota hai,
hone lag gaya.
So the inherent principle there was ki jo multicolored floral this and that wo nahi hota wahan par. It's very unified ek color,
lekin uske upar kaam hua hota hai,
uske upar
kaam hua hota hai, as you must have seen in our collection.
Absolutely. So that makes sense ki you've actually leveraged
on that
expertise.
Learning,
and brought
and
that here.
Brought it here. और उसके ऊपर क्यों हम कंफर्टेबल हैं कि इसमें नॉर्मल अबायास, देन वी आर गोइंग टू गो इनटू डीकंस्ट्रक्ट अबायास, फिर उसके अंदर वी आर गोइंग टू डू विद फ्यूजन कलेक्शंस व्हिच विल हैव कलर थीम्स अराउंड इट, देन वी हैव गॉट रमजान कमिंग, और रमजान में दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है हमारा प्रोडक्ट इज नॉट 10,000 दिरहम का, बट यू विल बी सरप्राइज इफ आई टेल यू कि कुछ ब्रांड्स 6,000-8,000 दिरहम से कम में अबाया बेचते नहीं है. public which only goes and buys those things.
Yeah.
So,
and it's so interesting, right? You buy Chanel for $25,000. There's a Chanel somewhere.
Yeah, there's.
Here, there is nothing. Like, it's...
It's just an abaya.
It's just an abaya. For me, it was a fascinating thing, to be very honest. If you go to rabbit hole, it's a fascinating world of modest fashion. You should definitely check it out. But thoda sa, I'd sort of loop out a bit and ask you, look, you were a hardcore finance guy who's now... So how did you... probably my question is, jo aapne role apna is waqt banaya, did you still create a similar role where you got in experts who could do the job that they're supposed to do very well, and then you can sit at a different role and use your expertise as the numbers guy? क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि यार लोग आते हैं कहते हैं यार मैं आया हूँ मेरा पैसा है मुझे पता या नहीं पता सेठ मैं हूँ मैं घुस जाऊँगा अंदर राइट जो आपके दोनों बिजनेसेस हैं उसमें आपने बोला कि मेरे पास ऑपरेशंस के बड़े अच्छे पार्टनर्स एंड टीम्स हैं जिनको मैंने एम्पावर किया कि यू नो वॉट यू डू दिस एंड आई विल फिगर आउट द स्ट्रैटेजी एंड द फाइनेंस टेल मी अबाउट योर रोल
माई एक्सपर्टीज वुड बी स्ट्रैटेजी लेकिन वट एवर आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ फैशन वट आई हैव ऑलवेज डन इज के पहली दो कलेक्शंस आई हैव स्पीयर हेडेड पर्सनली बींग इन्वॉल्व इवन सो मच सो डिज़ाइन जिस तरह अभी मैंने आपको अबाया की कलेक्शन है इसमें द ओनली डिज़ाइनर इज आई मी माई सेल्फ अलॉन्ग विद माई प्रोडक्शन डिज़ाइनर नॉट बिकॉज के आई एम ट्राइंग टू मेक अ मार्क बट जस्ट बिकॉज मुझे इस चीज़ में मज़ा आता है ये क्रिएशन वाली बात है
बट इसमें डिफरेंस है ना देखें एक ये कि यार आपने कागज़ खोला और आपने कहा यार ये अबाया है और ये अबाया जो है ये ऐसा होना चाहिए और इसमें यूँ स्टार होना चाहिए और चांद लगा होना चाहिए दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि यार यू नो वट आई कॉन्ट डू द स्टार एंड चांद आई कैन डेफिनेटली टेल कि यार मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा होगा ये बुरा होगा बट आई कॉन्ट बी द वन क्रिएटिंग इट राइट सो यू गो एंड यू एम्पावर समवन टू बी एबल टू क्रिएट इट And then you have the decision making. And one of the interesting things that I found in investment bankers, actually, I remember I met this person. I've tried to get him on the podcast. Maybe in the next season we'll get him. He's here in Dubai. And I ran into him, and then he told me he's building smart cities. I was like, very member intrigued. I'm just smart cities. But I'm interested. So I said, I'd love to know more. He called me to his office. It's called Terminus Group. And he's a CFO there, right? So purely finance. अच्छा उन्होंने मुझे बिठा के जब पूरा ओवरव्यू दिया ना उन्होंने कि कंपनी करती क्या है सर वो इतने ग्रैन्यूलर लेवल के ऊपर उनको एवरी टाइनी डिटेल की सेंस थी और ये दिस इज लाइक अ बिलियन डॉलर कंपनी ह्यूज चाइना इधर बड़ी जगह पर कर रही है बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को एज फाइनेंस गाइस समझते हैं व्हाट द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैव अ नैक फॉर इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सप्लाई चेन And really get granular with what they're getting into. But while they do that, they also have this knack of empowering the relevant people to be able to do what they do best in their roles, right? Tell me about your experience in the context of what I just said.
So I am somebody who goes into the detailing of the products. Maine गोइंग इन टू द अबाया ब्रांड जो मेरी लर्निंग फ्रॉम नूरिया हुई थी उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया नूरिया के अंदर हाउ वी हैड डन इट इज़ वी हैड गॉटन डिज़ाइनर्स एंड आर सेल्फ टुगेदर तो वी डिड इट लाइक अ टीम बट उस वक्त भी ये होता था कि दे वुड फ्यू थिंग्स आई वुड थिंक यार दे कैन बी डन बेटर नॉट बिकॉज आई न्यू बेटर देन दैम आई जस्ट थॉट के द कलर कॉम्बिनेशन वुड बी बेटर द डिज़ाइन और दिस सिलुएट वुड बी बेटर यू नो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी इस पर अच्छी लगेगी अगर दुपट्टा लाइट है तो कमीज़ ऐसी अच्छी लगेगी समटाइम्स आई वुड बी चैलेंज्ड एंड दे वुड प्रूव टू बी राइट समटाइम्स दे वुड सिट बैक कम बैक टू मीन से कि नहीं आपका ये वाला कलेक्शन या ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा चल पड़ा तो उससे मुझे ये चीज़ तो समझ में आई कि अगर आप लॉजिक एंड मार्केट ट्रेंड स्टडी करें यू कैन ब्रिंग समथिंग अप उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट अबाया ब्रांड में डिटेल में किया वेयर आई ट्रस्टेड माई इंस्टिंक्ट कम्प्लीटली And I did not get in a designer on board and I implemented that and we will see what the market says but I'm hopeful that we're going to have good results.
You mentioned colors and design and previously when we spoke you talked about you work very closely with LAM.
Yes, I did.
LAM, tell me about that sort of partnership, so, that collaboration.
Jab hum RTW करते थे रेडी टू वेयर. वी हैड वेरियस पार्टनरशिप्स एंड लाम वॉज वन ऑफ आर पार्टनर्स, वन ऑफ आर मोस्ट एक्टिव पार्टनर्स. एंड वी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्हीं की सोशल मीडिया कंपनी सक्सेल मैनेजेज आर अकाउंट एंड इट्स एन ओल्ड रिलेशनशिप. उनके साथ हमारा टाइप बहुत अच्छा रहा अमंग्स बेटर देन ऑल अदर पार्टनर्स दैट वी हैड एंड टिल डेट. ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर डूइंग RTW और प्रेट, हम उनके साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. यू नो दे दैट्स अ कंपनी दैट हैज़ डन यू नो वंडर्स फॉर इट सेल्फ एंड बहुत जल्दी उसने अपना नाम बनाया. आई नो सम ऑफ द पीपल ओवर देयर एंड आई हैव गॉट ग्रेट रिगार्ड्स फॉर देम. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ, देखिए जब कोई चीज़ नई फैशन की दुनिया में आ रही होती ना, एवरीबडी थिंक्स इट्स द प्रोडक्ट, इट्स नॉट ऑलवेज द प्रोडक्ट, इट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल.
राइट,
वो चीज़ आप बैक बर्नर पर कभी नहीं डाल सकते. हमने हर चीज़ इसलिए टेस्ट की बिकॉज अगर हमारी फिंगर्स बर्न होती है तो होने तो हमें देखना है. आज वी आर सो कंफर्टेबली प्लेस्ड कि मैंने आपको बताया 24 का रन 48 का रन, अगर हमें 4000 का भी रन करना पड़ेगा ना तो वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी नो हाउ टू मैनेज
स्केल अप एंड डाउन करना बहुत आसान है.
स्केल अप एंड डाउन करना आसान है.
लाम का वुड यू से द बिगेस्ट थिंग, सो व्हेन आई स्पोक टू यू नो द लाम CEO एंड ही मेंशनड डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली both in terms of digital channels as well as the on-ground sort of infrastructure. But he also mentioned this new thing that they were working on, and that was basically a lot of insight generation, jo ke basically bottom-up hai, right? So consumers ko samajhna, consumers ko samajh ke AI ko utilize karke identify karna, and the way that he explained it was very fascinating to me, where he said ke देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो के करते क्या हैं, जो मैंने पहले मॉडल बताया खाड़ी का मॉडल है, मंटो का मॉडल है, जो बेसिकली डिज़ाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, राइट? कि आप कहते हैं कि फैक्ट्री मेरी जो कपड़ा बना रही है वो अलग, कलर करने वाली अलग, CMT अलग, मैंने सिर्फ उसको कनेक्ट किया, असेंबल किया, मैंने वैल्यू एडिशन दी और मैंने ब्रांड बनाया और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लाम ने कहा कि यार हम आके डायरेक्टली थियोरेटिकली फैक्ट्री वाले को या वर्टिकली इंटीग्रेट इस तरह कर रहे हैं कि हम उसको कह रहे उसी बंदे को एम्पावर कर रहे हैं कि यार तुम्हें नहीं पता तुम्हें डिज़ाइन नहीं आता, कोई मसला नहीं है, ये कलर्स चलेंगे अगले सीज़न में, ये वाले डिज़ाइन चलेंगे अगले सीज़न में, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इन प्रिंसिपल थियोरेटिकली दैट वॉज अ वेरी वेरी डिसरप्टिव एंड इंटरेस्टिंग आइडिया. हैव यू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग दैट इनसाइट फ्रॉम लाम एंड हाउ वॉज दैट?
सो We being a brand, we continue to focus on our own R&D. हमने अपनी development की, all our designs are in-house, none of it is from outside. What we did capitalize on is the distribution network that Lam offered.
Right.
और उनकी एक चीज बड़ी commendable थी, they supported us in all the journeys. Because देखो business में सारी किस्म की journeys आती हैं. And when you are a startup, you go through them. Lam was one of the names that supported us in all our journeys, and it supports us till date, you know. So I personally have a lot of regards for the whole, you know, setup. Although I don't know the owners directly, but I know one of them, you know, we spoke once or twice through a reference. But it's one of the companies which definitely stands out, not only for me as a brand.
Hmm.
2020 mein jab main pehli baar gaya, Lam was a very small name at that time trying to break through. And today in 2024, I can tell you it's amongst the big boys.
Right.
So that's, you know, amazing job done, great work done. And you're right. A lot of it is also coming from the fact, because abhi recent trip mein, I got the chance to go to their office. So unke office mein upar unki digital team baithi hui hai. Niche, I saw CMTs, kaam ho raha hai, designing pe research ho rahi hai. So I was thinking, ke, what would a distribution network do with it, and you have answered this question for me today, so it makes amazing sense. They are looking at a forward approach. आगे जाके बहुत सारे लोग आएंगे कि यार मैंने कुछ करना है. Especially again, I say Gen Z, because they will come back, they will have an idea, they will not know how to execute it. Lam is greatly positioned to say it can execute that. So I think any business जिसकी forward looking approach होती है ना, disruptive approach होती है. You mentioned AI, something which we realized, it's just not about the ads, it's actually about which person comes onto your website, places an order, closes it, and that's how the system learns it. Sometimes traffic will come and they'll go. Aur aap khush ho jate hain views dekh ke, oh itne log aaye gaye, but it really doesn't matter. To wo bhi ek journey hai. Day one se nahi pata thi. Hame laga ke word of mouth se chalegi cheeze, but everything goes hand in hand parallel. So kuch partners is journey mein hamare saath rahe.
Right. Jo aapka modest fashion brand hai, you said ke wo Dubai mein ban raha hai. Why didn't you go for ke yaar mera Pakistan mein team baithi hai, Dubai mein main design bitha lunga. Mujhe global insight chahiye, for example I want to get a you know European designer on board, I'll bring them into Dubai. But ab to yani ke Zara jo hai wo स्पेन में बैठ के पूरी दुनिया से एसेंशली सोर्सिंग कर रहा होता है, राइट? सो यू ऑलरेडी हैव अ सोर्सिंग नेटवर्क, वुडंट इट हैव मेड मोर सेंस टू एक्सपैंड दैट नेटवर्क इन लाहौर, विच इज़ इन लाहौर, राइट? सो वो लाहौर में एक्सपैंड करके, क्योंकि मार्जिन कॉल कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी कंसिडरिंग के यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ आई वुड से प्रॉब्ली आई डोंट नो रेगुलेशन वो ज़्यादा है. So why did you decide ke yaar theek hai, I'll bear that cost but I'll keep this in house in Dubai?
For the same reason I just mentioned, the forward looking approach. Aaj aap jo baat keh rahe hain, har dusra banda jiske paas wo setup hai wo wahi karega. It's only when you realize ke the customer, in the end who are we making it for? The customer. The customer is going to be very comfortable when she's able to pick up the phone in the morning and talk to somebody who's responsible for her dress, and not only that, second half mein that same person can go and meet that client. That builds something which is called trust. Brand is all about trust. Jab customer loyalty aapke brand ke sath build hona shuru hoti hai, there is nothing that can replace that. Aur wo tabhi build hogi jab customer ki koi complaint same day solve hogi ya uski koi replacement request नेक्स्ट डे या उसके बाद वाले दिन में कोई ना कोई उसको एडजस्ट कर सकता है. पाकिस्तान में ये सेटअप रख के मैं कभी भी ये कस्टमर सर्विस नहीं अचीव कर सकता. बैंकिंग में एक चीज़ समझ आ गई थी, इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इसीलिए जो चीज़ पाकिस्तान में की उसका फोकस ये कि वहाँ के कस्टमर्स के लिए जो भी फोकस है, जो चीज़ यूके में कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल एक अलग सेटअप किया है, ताकि अगेन द कस्टमर सेंट्रिक does not shy away.
But that's what I'm trying to understand. Fashion mein customer, so either you're doing, let's say, high end couture where someone is coming in and saying, listen, I want an X abaya and usme mujhe Y design chahiye aur wo mujhe jo hai turn around chahiye 24 ghante ka, to main kehta hu yaar mujhe yahan pe setup bithana hai kyunki usko foran se karna hai. Agar to main usko kehta hu ki main फास्ट फैशन टाइप सिचुएशन में जा रहा हूँ, तो कस्टमर को एक एक्सपेक्टेशन, उसको पता है यार मुझे ये चीज़ चाहिए, वो क्यूसी होके वो चीज़ जब पहुँच रही है आपके पास तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्टन एक्सपेक्टेशन तो मीट कर ही रही है. उस पर वो आता है मैक्सिमम, वो ये कहेगा कि यार मुझे इसमें वो चाहिए, थोड़ी फिटिंग शायद का प्रॉब्लम हो, तो मैंने चार टेलर बिठाए यहाँ पे, मैंने कहा यार फिटिंग मैं कर दूंगा. यू नो अलॉट ऑफ ब्रांड्स डू दैट, कि वो सोर्सिंग कर रहे हैं लेट्स से इंडिया से या टर्की से या व्हाटएवर, एंड वो यूके और जहाँ भी उनके हुए हैं तो हर जगह पे एक टेलर बैठा हुआ है और वो उसको जो है ना पैंट्स को थोड़ा छोटा कर रहे हैं या वो साइज़ को थोड़ा अप एंड डाउन कर रहे हैं,
एडजस्ट कर रहे हैं
राइट? सो इस केस में what sort of customer requirement are you looking at where you need the actual टॉप डाउन
सेटअप
टू बी हेयर?
सो मेरी जो टारगेट मार्केट है वो इट इज़ ओनली गोइंग टू बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड ओनली देन द अबाया इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड.
ओके,
सो देर इज़ नो रेडी अबाया, ओनली द डिज़ाइंस आर रेडी एंड देर विल बी अ लीप टाइम ऑफ 5 to 4 वर्किंग डेज. तो ईच एंड एवरी ऑर्डर इज गोइंग टू बी स्टिच्ड, इज गोइंग टू बी मेड from scratch once the customer places the order.
Right.
That is why I need the setup to be here, because in between, agar client ko koi aur design, kisi aur abaye ka acha lagta hai and they want to talk about it, unke paas wo room ho.
Right.
And they know what they're getting.
So it's, I get it. So it's more luxury. It's more essentially luxury. What you're saying is ki main aur uska price point bhi zyada usko reflect karega. You're basically talking Europe mein jahan par fast fashion Zara hai wo puri duniya se source kar raha hai, wahan par high end brands hai jo keh rahe hain ki ji hum aaj bhi you know Amsterdam mein hamari ye building hai aur us building mein hamare wo 60-year-old sahab jo hain wo dhage ko yun karte hain aur uski wo videos aa rahi hoti hain.
Uh-huh.
Right, so is that the positioning that you're looking for?
For the positioning of the Abaya brand, that is exactly what it is. It's going to be a niche, nice kind of a setup, which is going to cater to all the GCC clientele with a touch of a fusion touch, just pe Abayas honge, and it will be followed with trench coats.
Right.
Trench coats ke liye, I will be onboarding a designer from the West, and we are in communication over there. Lekin टू आंसर योर क्वेश्चन, वेरी स्पेसिफिक टू क्लाइंट्स नीड्स, नॉट मास प्रोडक्शन. टू गिव यू एन आंसर इन सिंपल वर्ड्स, के अगर 5 या 10 दिरहम का भी कपड़ा मिल रहा है, वी आर ऑप्टिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जापानीज मटेरियल टू गेट दीज अबायास.
राइट, मेक सेंस. वेयर एट द 1 hour 26 minute मार्क, आई एम गोना रैप दिस अप. आपको कितना अर्सा हो गया इधर GCC में?
मोर देन 20 years. आई केम हियर जब Y2K की बग की बात हो रही थी, सो आई डोंट थिंक पीपल इवन रिमेंबर इट, बट या मोर देन 20
बियॉन्ड द बिजनेस. जब आपने कहा कि बिजनेस के लिए आई वुड गो एवरी मंथ और 2 months, उससे पहले वर यू एक्टिवली गोइंग टू पाकिस्तान इन एंड आउट?
यस, आई यूज्ड टू, यू नो, कराची इज अ प्लेस, फ्रेंड्स, एवरीबडी, सो मेट देम. बिटवीन 2014 एंड 2017 वॉज अ टाइम आई डिडंट गेट द चांस टू गो बैक अलॉट, लेकिन उसके बाद से और उससे पहले, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लास्ट मंथ आई वॉज ऑल इन द नॉर्दर्न साइड, नथिया गली एंड एवरी अदर प्लेस इन पाकिस्तान.
As someone who's been out of Pakistan for so long, होता है ना जब आप किसी जगह में के अंदर होते हैं ना, तो आपको इतना एवोल्यूशन नज़र नहीं आती. इवन टू द एक्सटेंट के मैं कहूँगा कि जब आप का बच्चा अपना होता है या कोई आगे पीछे होता है, तो आप डे टू डे में आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो, तो फिर भाई वाला आते कहते हैं ओ कितना बड़ा हो गया टाइप, यू नो. सो बेसिकली देयर सीइंग द डिफरेंस, द जंप. हाउ हैव यू फाउंड पाकिस्तान एंड इट्स एवोल्यूशन ओवर द लास्ट आई वुड से 2 decades? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 decades, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर द अदर डे, और उन्होंने मुझे बोला कि यार हालात पाकिस्तान के आजकल हैं ऐसे कि थोड़ा सा आपको डिस्पोंडेंस होती है. तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा यार बेटा ठीक है हालात होंगे, ख़राब होंगे, बट हमारे टाइम पे मैं बड़ी सीनियर पोजीशन में था बैंक में, और हम जब जाते होते थे इस्लामाबाद में, हम रहते थे पिंडी में, वो जॉब करने जाते थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो एक दिन एक बंदा गाड़ी में चलाता था और 2 अंकल्स को पिक करता था, दूसरे दिन दूसरे करते थे, हम कार पूल कर रहे होते थे, हमारी तनख्वाह ऐसे होती थी. उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया, उन्होंने कहा यार अब मैं देखता हूँ विद ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, तुमने आई वॉज 31 व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट कार अल्हम्दुलिल्लाह. उन्होंने कहा तुम्हारे दोस्त यार जो हैं वो तो स्पोर्टेज निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, हम तो उस टाइम में हमारी कल्टस निकलती थी, हम कहते थे यार कमाल हो गया. सो देर इज़ डेफिनेटली अ कॉन्टेक्स्ट चेंज. चलो हम कहते हैं हम पेरिफेरी में टॉप पे हैं, टॉप 1-3% पे आ जाते हैं. उन्होंने मासेस की मिसाल दी, उन्होंने कहा यार जब उस टाइम की जो वर्किंग क्लास होती थी, आपके घरों में आती थी, उनको तस्वुर ही नहीं होता था कि AC, फ्रिज, ये वो.
फ़ोन लग्जरी था,
फ़ोन लग्जरी था. अब आपके यहाँ फाइनली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैस मार्केट घरों में जाना शुरू हुई हैं. ठीक है वो बड़े घरों में LG होता था, छोटे घरों में डॉलर्स जा रहे हैं, बट पहली दफ़ा इतनी डेवलपमेंट हुई है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स घरों में जा रही हैं, साइकिल वाला बाइक पे जा रहा है, सेलफोन्स आ गए हैं, यू नो. सो इट्स लाइक यस योर शेयर्ड एक्सपीरियंस, यू लिव्ड इन दिस कंट्री ऑल योर लाइफ, यू मे फील डिस्पोंडेंट के यार यू नो वॉट, हम अमेरिका नहीं बन पा रहे, बट ही इज़ बिन इन एंड आउट, वो अमेरिका चले गए वापस आए आगे पीछे, तो ही वॉज लाइक यार इट्स नॉट दैट बैड, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू नो 20 साल में बहुत कुछ बेहतर भी हुआ है. दैट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाहर से रहते हुए आप कॉन्स्टेंटली वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं द गुड्स, द बैड्स, द अग्लीज, हाउ हैव यू सीन द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ओवर 20 years?
यार ऑनेस्टली आई विल टेल यू समथिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू अबाउट इट, ये मैं फैक्चुअली बता रहा हूँ. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. अभी मेरी ट्रिप पे वी हैड समबडी हु हैड टू यूज द व्हील चेयर, एंड यू नो इवन इन ऑल द रिमोट एरियाज वी स्टिल फाउंड एक्सेसिबिलिटी. यही एक छोटी सी चीज़ आप इसके ऊपर सोचे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एज अपोज टू अ प्लेस जहाँ पे कभी मुझे याद है साइन ऑफ अ पब्लिक टॉयलेट भी नहीं होता था, यू नो. अब इवन इन रिमोट एरियाज द फैक्ट कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ आप नहीं भी जानते, ये एक छोटी सी चीज़ यू नो द फैसिलिटी फॉर द जनरल पब्लिक, ये भी इम्प्रूव हो गई है. अगर हम गलत चीज़ों की बात करना शुरू करेंगे तो बहुत है, बट इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट आपको अच्छी चीज़ों को भी याद रखना है, यू नो. आपकी हाइजीन, अब वो कोविड ने सिखाया, किसी ने भी सिखाया, मैंने इस्लामाबाद में गोलगप्पे प्लास्टिक के प्लेट में, वो बंदा ग्लव्स के साथ सर्व कर रहा है और उसका एक नॉर्मल ठेला था. दिस वॉज अ साइट विच आई डिडंट थिंक आई विल सी इन पाकिस्तान विद प्लास्टिक के स्पून, मुझे आज भी याद है वो पुरानी प्लेटें और वो सिल्वर कलर के स्पून, और हम सब खा जाते थे उससे, राइट। बट वो भी तो एक चेंज आया है ना, कैसे आया, ठीक है सराउंडिंग कुछ भी हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं ना। एज अ ह्यूमन माइंड हमारी एक आदत होती है ना, वो नेगेटिविटी तो को खींच खींच के लंबा करके खींचना, जो पॉजिटिव ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर मुल्क में होता है, तो आई थिंक वो फेयर नहीं है। आई थिंक आपको इस चीज़ को सामने रखना है, कंसिडर करना है कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। महंगाई है बेशक, और पिछले 2 सालों से तो बहुत ज़्यादा है, बट आज भी आप पाकिस्तान के कुछ शहरों के कुछ एरियों में जाओ तो आप दंग रह जाते हो कि यार लोकल बर्गर जॉइंट इज डूइंग बेटर देन KFC, यू नो फॉर एग्जांपल। और लोगों को मतलब पहले वक्तों में मुझे याद है बस वो चमन आइसक्रीम की बात होती थी, अब तो देर आर अनलिमिटेड ऑप्शंस ऑफ लोकल ब्रांड्स व्हिच इज़ ग्रेट, राइट। लोकल क्लोथिंग ब्रांड्स, लोकल फूड स्पॉट्स पिकिंग अप, इट्स अ चेंज, इट्स हैपनिंग। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वी होप एंड प्रे कि नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाए, बट वो मैंने कहा ना कि चेंज इज कॉन्स्टेंट एंड इट विल हैपन।
व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान हैज़न्ट बीन एबल टू ग्लोबलाइज इट्स इकॉनमी? एंड बाय दैट आई मीन, आई डोंट मीन के द पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान इज ऑलवेज थिंकिंग यार सेंटोरस में ज़ारा क्यों नहीं है, राइट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज ज़ारा गेटिंग ज़ारा इन पाकिस्तान विल एक्चुअली बी अ सिम्पटम ऑफ you know you finally getting enough dollars as an export economy for that matter, chahe wo export products ki ho chahe wo services ki ho. You go to let's say Bangladesh and they've been able to 1970 mein humse azad hue aur 50 saal mein unhone jo hai ji apne aap ko $100 billion ki economy export economy pe wo le ja chuke hain. GDP unka hamare se double ho chuka hai per capita. Unke bhi bade masaile hain, khair unki authoritarian government hai aur elections unki bhi koi itni achhi nahi hui, but इन टर्म्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स कोई एक चीज़ तो वो सही कर गया ना, उन्होंने अपनी एक टेक्सटाइल को ही बूम करा दिया, चाहे बाकी लेफ्ट राइट वो कुछ करें या ना करें। मुझे जो मैंने जो सुना है कि जी उस टाइम के ऊपर तो वो करते होते थे, उनकी कोर एक्सपोर्ट थी वाज सम क्रॉप्स दैट दे वुड यू नो फिशरीज एंड स्टफ लाइक दैट। अब उन्होंने उसको वैल्यू एडिशन के अंदर जाके वो दुनिया का हर किस्म का, आप यहाँ पर जाएँ किसी ब्रांड को उठाएँ, टैग उठाएँ, इंडिया या बांग्लादेश से आ रहा है। Pakistan unfortunately has been unable to, you've got the population, you've got the theek hai aap keh sakte hain mass market educated nahi hai, lekin ek certain segment bahut acha educated hai, matlab world class educated hai infrastructure wise, wo population jo hai wo puri duniya mein ghoom bhi rahi hai, unko exposure bhi mil raha hai, but somehow jab hum baat karte hain everybody can build a business for Pakistan, there are a lot of people I speak to who will build a business for Pakistan, but the minute I tell them okay do something where you can do something here, acha wahi banda Pakistan se bahar jaake bahar bhi bada acha kar lega, lekin jab usko Pakistan mein karke bahar karna hai na, wahan par there is this weird somehow a lag, and could be a myriads of reasons, but what in your opinion has made that situation worse?
So we are one of them, we are trying to do it, we are bringing it, made it in Pakistan, bringing it out of Pakistan. I think bahut sare factors at play hain, koi ek cheez nahi hai, it can't be one particular thing, ya aap ye keh dein ki sirf matlab education ko blame kare ya एक कम्युनिटी को ब्लेम करें या आप ये कहें कि नहीं, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्ले होती रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट एराज, यू नो 80s का एरा डिफरेंट, 90s का एरा डिफरेंट, देन अनफॉर्चुनेटली वी स्टार्टेड सीइंग द डिटीरियोरेशन ग्लोबली क्या हुआ, एज अ कंट्री भी हमारा फोकस कहीं और चला गया, हम अपने ओन जो हमारी आइडेंटिटी लूज हो रही थी हम उसको कहीं बचा रहे थे, कहीं सेव कर रहे थे, यू नो आई थिंक फिर वहाँ से डिविजन्स होने लग जाते हैं, यू नो सिटी से ज़िले, ज़िले से कास्ट, कास्ट से गांव, बहुत सारे माइक्रो साइलोज बन के मिनी मिनी साइलोज में चीज़ें ऑपरेट होने लग जाती हैं।
बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लुक द सेम साइलोज एग्जिस्ट फॉर लोकल बिजनेस एज वेल, राइट,
दे डू,
एंड द सेम सॉर्ट ऑफ साइलोज एग्जिस्ट इन इंडिया, इंडिया इज अगेन इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ एथनिसिटीज एंड कल्चर्स एंड रिलीजन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दे हैव देयर ओन फॉल्ट लाइन्स, लाइक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बड़े इंडियंस आते हैं आके कॉमेंट करते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तानी कॉन्टेंट देखना भी होता है, फिर गालियाँ भी देनी होती हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू टेक द डेटा आउट ऑफ द लास्ट 20 years एंड देर आर अ लॉट मोर टेररिस्ट बॉम्बिंग्स इन टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया दैन इन पाकिस्तान। Pakistan, obviously, the volume and size and scale of that those attacks were much higher. But India, mein wo ye tha ki wo ho raha tha unki wo you know the Punjab wali jo unki movement hai wo bhi chal rahi hai aur unki aur jo eastern states hain wahan pe bhi ek sort of movements, nationalistic movements chal rahi hain. But they're able to sustain all of that. Kare theek hai ho raha hai. But that's not what defines us. Business is business. Business is working. And usme regions mein aapko ye tak nazar aata hai ki yaar agar IT hai to IT pure India mein equally nahi spread out hua. Certain cultures are able to do it better. So Pakistan mein main keh sakta tha ki yaar theek hai shayad hame nazar aata ki Pathan bada acha kar sakte the. KP mein IT grow kar jata, Sindh mein textile grow kar jata, idhar ye ho jata wo ho jata. Aur ye humne history mein dekha bhi ki Sialkot ki industry bani sports mein, unhone sports ko champion kiya. Faisalabad ne textile ko champion kiya. बट जो इंडस्ट्री 60s और 70s में बन गई ना
वो बन गई,
उसके बाद किसी ने मुड़ के नहीं देखा कि यार अब कुछ कुछ हम कुछ इनोवेट करने की कोशिश करें. दैट हैज टू डू विद कि आपको ऐसा लॉक किया गया है. अच्छा 60s और 70s में ऐसा नहीं था. 60s एंड 70s में यू योर पीपल, अच्छा दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, बट योर पीपल वर ग्लोबल इन द मोस्ट हाईएस्ट सेंस ऑफ द वर्ल्ड, राइट? दे हैड द विजन टू बी ग्लोबल. For some reason, you're not seeing the same now.
I think vision आज भी है लेकिन वो दिखता नहीं है या लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं. पहले अगर विजन होता था ना तो आप एज अ कंट्री ऑपरेट करते थे. और यू आर राइट, एक चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ मिसिंग है ना वो ये कि हम इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं सोचते. अब अगर हम लगाने का सोचते हैं तो हम फियर फैक्टर्स में ही घूमते रहते हैं. कुछ सही फियर फैक्टर्स हैं, कुछ पर से फियर फैक्टर्स हैं जो शायद ना भी हों लेकिन लोगों के कहने से वो इतने बड़े बन चुके होते हैं कि आपका दिल भी चाह रहा होता है तो आप कहते हैं नहीं. फिर क्या है, एक और ट्रेंड है बाय डिफॉल्ट, यही चीज़ आ रही है कि बाहर जाके कुछ बनेगा. नॉट नेसेसरीली, आप अगर अच्छे सेट ऑफ ब्रेन्स मिल के कुछ छोटा भी स्टार्ट करते हैं ना तो पाकिस्तान में आज भी इतना पोटेंशियल है कि वो कोई भी छोटे बड़े उससे बड़े बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है. कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल हैं बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो दुनिया से अलग हैं साइलोज में लेकिन वो अपना काम चला रही हैं. आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स हैव बीन यू नो डन इन अ वे वेयर द कंट्री इटसेल्फ हैज़ फेल्ट द ब्रंट, नोबडी एल्स. फिर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ होती है कि प्रसेप्शन, जो चीज़ें क्रिएट हो जाती है और दुनिया एक चीज़ को पुश करने में लगी होती है, कॉल इट एन एजेंडा, कॉल इट वॉट एवर, उससे भी बहुत सारे लोग बोल जाते हैं नहीं नहीं अगर ये वहाँ के तो ये ऐसे ही लोग होंगे. फिर उसमें क्या होता है, कहीं और उससे ज़्यादा बुरा काम भी हो रहा हो लोग उसको, बिकॉज अगेन द परसेप्शन हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड. तो ये भी एक चीज़ है. दूसरा, एज अ कंट्री आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग वॉट एवर बैक इन. दैट्स वाई आई कीप गोइंग बैक इन टू पाकिस्तान फॉर सम शेप ऑफ फॉर्म. We are already in talks with setting up something else in Pakistan, you know, again in Pakistan for Pakistan. And then agar wo cheez badi hui, we'll bring that out of Pakistan. To hum apna role play ya main apna role play karne ki koshish kar raha hu, and I'm sure many many much more than me are doing it. But I think ki kuch waqt lagega, kuch cheeze aahista aahista wo dhund wo badal chhatenge aur uske baad hi kuch clarity aayegi. Hope of 2050 is great for Pakistan, not because कि सिर्फ population young है या ये चीज़ है, नहीं. I think जैसे मैंने कहा था ना कि एक generational change है, जो change है ना वो 100 years के cycle में दिखेगा. जो हमारे grandfathers के time पे होते हुए जब वो wars देख रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को stable job सिखाई. हम ये देख रहे हैं कि खाली stable job नहीं, कुछ multiple चीज़ें करनी चाहिए. Gen Z कुछ और देख रही है, उसके बाद वाली जनरेशन कुछ और देखेगी. तो इट्स अ स्लो प्रोसेस. शायद कुछ मुल्कों में थोड़ा तेज है, हमारे मुल्क में थोड़ा स्लो है, बट वी विल गेट देयर.
मेक सेंस. मोहसिन भाई, आई एम गोना रैप दिस अप. वी आर एट द 1 hour 40 minute मार्क, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट. आई एम एक्साइटेड टू सी पर्टिकुलरली द मॉडर्न फैशन ब्रांड. दैट्स समथिंग दैट I've gotten fairly interested in recent times, and I'm curious to see how that goes. All the very best of luck. Thank you so much for coming in.
Thank you very much for having me, and Assalamu alaikum.
And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्जेशन पहुँचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. बट anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.